तो ठीक है, परमेश्वर आपको आशीष दे भाई नेविल। सुप्रभात मित्रों, मुझे कभी तो एक बार देखना होता है यह पता लगाने के लिए यह सुबह है या शाम। तो ठीक है, मैं आज सुबह यहाँ आकर खुश हूँ। यह गर्म है और निश्चय ही आपका गर्म जोशी से अभिनंदन हुआ होगा। हमारे पास अब और वसंत ऋतु का मौसम नहीं है, हमारे यहाँ गर्मी और सर्दी है। क्या हमारे पास नहीं है? ऐसा लगता है कि हर एक चीज किसी न किसी तरह आपकी जरूरत से बाहर हो गई है। तो जिस बात ने मुझे देरी करा दी, मैं घर की सफाई कर रहा था और मैं आज सुबह अकड़ गया था और तकलीफ में था और मुझे उठकर बहुत समय हो गया, लेकिन मैंने इस बात को नहीं समझा था कि एक महिला के पास करने के लिए बहुत ही काम होता है। उन्हें 3 बच्चों को तैयार करना होता है और फिर संडे स्कूल के लिए जाना पड़ता है। ओह प्रभु, करने के लिए बहुत सा काम है, जितना मैंने सोचा था उससे अधिक करना होता है। और मैंने सोचा, खैर अब पिछली शाम वो काम को कर रही थी और मैं प्रचार के कार्य क्षेत्र से वापस आया कि घर की साफ सफाई में सहायता करूं। मैंने सोचा, ओह क्या इसे संभालना कठिन परिश्रम नहीं है? मैंने 1 सप्ताह के लिए $35 देने की पेशकश की कि कोई तो बच्चे की देखभाल करे, और कोई भी इसे करने के लिए तैयार नहीं होता है। अधिक समय नहीं हुआ, एक व्यक्ति ने यहाँ अखबार में एक लेख का अंश लिखा। निश्चय ही यह बात का संबंध इससे नहीं है। कहा कि वो यहाँ पर था किसी प्रकार का राजनीतिज्ञ जो यहाँ केंटकी में था। उसने कहा कि वो 2 बार सेना में रहा था, वो 3 बार घायल हुआ था एक नायक के रूप में। वो पड़ोस में एक नागरिक के रूप में रहता था। उसने बहुत सी चीजें की थी, 2 बच्चों के जीवन को बचाया था और एक को खाड़ी से और एक किसी और चीज से। वो भूल जाता है उसे क्या करना था और अंत में उसने सोचा, ठीक है, उन्हें पड़ोस से संबंध को सही रखना होगा, वो एक ऑफिस को चलाएगा। और जब ऐसा उसने किया, 1 लाख लोगों में से उसे 5 वोट मिले। उसने शासन अधिकारी से पूछा कि क्या उसे एक बंदूक मिल सकती है ताकि उसे पड़ोस से बाहर निकलने में मदद मिल सके। कहा, यहाँ तक कि नगर के आसपास रहना भी खतरनाक था, उसके पास इतने मित्र भी नहीं थे कि उसे शहर से बाहर निकालने में सहायता कर सकें। हालांकि यही अमेरिकी आभार है, क्या ऐसा नहीं है? यह सही बात है, अमेरिका में जितना अधिक आप करते हैं उतना ही अधिक आपसे काम करने की अपेक्षा की जाती है। यह सही है, आपसे अधिक अपेक्षा की जाती है। तो ठीक है, मैं आज सुबह अपनी ओर से प्रशंसा को करना चाहता हूँ कि कलीसिया कितनी साफ और अच्छी दिखाई पड़ रही है। और जैसे ही मैं आया, बेहतर आवागमन के लिए उनके पास वहाँ पर एक दरवाजा था। तो यह वास्तव में अच्छा है जो यहाँ ट्रस्टी बोर्ड के कार्य पर है और इससे प्रेरित करने में सहायता की है। यह निश्चित रूप से बहुत ही अच्छा था और यह एक अच्छा साफ सुथरा काम किया गया है। मैं सोचता हूँ भाई हॉल, यदि मैं गलत नहीं हूँ, उन्होंने इसे किया, यह बहुत ही अच्छा काम है। अब यह थोड़ी देर हो चुकी है, लेकिन आप जानते हैं कि लोग कितने पवित्र होते हैं। देखिए, इसका कोई निश्चित समय नहीं है। क्या हमारे पास है भाई स्लॉटर, भाई ड्रिट्समैन? हर एक चीज वैसे ही जैसे हम इसे लेते हैं। वहाँ दक्षिण में अद्भुत सभाएं हुई थी, लेकिन मैं अभी कुछ दिनों पहले ही बात कर पाया हूँ। मैंने सीधे 4 महीने तक प्रचार किया और मेरे पास इतनी आवाज भी नहीं थी कि यहाँ तक फुसफुसा भी सकूं। मुझे बस एक प्रकार से अपनी पत्नी को इशारे से बताना पड़ता था, आप जानते हैं मैं क्या चाहता था, और यह एक प्रकार से। और फिर उसके बाद और यहाँ वापस आते हुए, जहाँ यह इस प्रकार का कुछ छल कपट का मौसम रहा है, क्योंकि एक दिन ठंडा और अगले दिन गर्म, मुझे बहुत ही एक पुराने समय का फ्लू हो गया। और मैंने कुछ ही दिन पहले उठकर और फिर से आरंभ किया, और इसलिए हम भले प्रभु के लिए धन्यवादित हैं, हालांकि उसकी सारी अच्छाई और हम पर दया के लिए, और वो कितना भला रहा है। वहाँ नीचे अद्भुत सभाएं हुई थी और प्रभु ने हमें बहुत ही अधिक बहुतायत से आशीषित किया। और पिछली रात्रि लगभग आधी रात को भाई वुड ने मुझे अपने घर बुलाया, और भाई ऑर्गन ब्राइट फोन पर थे, चाहते थे कि मैं स्विट्जरलैंड में आरंभ करूं, तो यह एक बूढ़े व्यक्ति के लिए वहां जाना बहुत ज्यादा है। सो अब हमारी अगली सभा अगले महीने की 11 तारीख को आरंभ होगी इंडियानापोलिस के कैडल टैबरनेकल में। इंडियानापोलिस के कैडल टैबरनेकल में 11 से लेकर 15 तारीख तक, और फिर वहां से मिनियापोलिस की ओर, इंडियानापोलिस से मिनियापोलिस क्रिश्चियन बिजनेसमैन। अब मैं सोचता हूँ भाई नेविल ने मुझे फोन किया और मैं दिखाना चाहता था मेरा, मैं उनका और नेविल के 3 जनों के समूह का आभार व्यक्त करता हूँ जिन्होंने मेरे लिए आकर और उस अंतिम संस्कार में गीत गाया। जो मेरे बीते परसों के दिन पर था, और मैंने भाई नेविल से पूछा। वहाँ पर कोई भी गीत गाने वाला नहीं था, लिडिक परिवार, जब श्रीमान लिडिक महिमा में घर चले गए थे। और मैं निश्चय ही, यदि उसका पुत्र, मैं उसे यहाँ नहीं देख पा रहा हूँ। और मुझे बाद में पता चला कि यह उसका एक पाला पोसा हुआ पुत्र था। ये जानते हुए कि उसके पिता मर रहे हैं, बिना उद्धार के मुझे बुलाने के लिए घर की ओर दौड़ा, इससे पहले कि वो और उसके पिता ने मरने से पहले उद्धार को पाया। तो सबसे बड़ी चीज जो उस लड़के ने कभी की, वो किसी को बुलाने के लिए आया, जिससे कि जाने से पहले उसके पिता के लिए प्रार्थना करें। और नेविल के तीन जनों के समूह ने आकर और उनके लिए बहुत ही प्यारा सा गीत गाया। और सो भाई नेविल ने मुझसे पूछा कि क्या मैं आज सुबह और इस शाम को भी प्रचार करूंगा? इसलिए आप ध्यान देना, वचन कहता है बहुतायत से मांगो कि तुम। इसलिए भाई नेविल निश्चित रूप से उन बातों पर वचन के अनुसार करते हैं, बहुत ही ज्यादा, और इसलिए मैं अपनी पूरी कोशिश करूंगा। अब मैंने आज सुबह कहा, क्योंकि यह मातृ दिवस है और हम छोटे बच्चों से बात करना चाहते हैं। मैंने सोचा कि आज सुबह छोटे बच्चों के लिए एक अच्छा समय होगा। अब मैं सोचता हूं कि माँ का दिन है। अब धरती पर कोई भी इतना मीठा नहीं है जिसे हम जानते हैं, जो एक वास्तविक सच्ची माँ से बढ़कर हो। परमेश्वर उसके साहसी प्राण को आशीष दे, उस एक सच्ची वास्तविक माँ के। लेकिन आज हमें बहुत सारे विकल्प मिल गए जिसे माँ कहा जाता है, जो कि माँ नहीं है। वे तो केवल स्त्रियाँ हैं जिनके बच्चे होते हैं, लेकिन वो माँ नहीं है। एक पुराने समय की माँ ही वो एक है जो अपने परिवार की देखरेख करती है, और वो इन मौज मस्ती में और नाचने के लिए बाहर नहीं पड़ी रहती है और सारी रात भर धूम्रपान करती, शराब पीकर वहाँ आती है। वह माँ के पवित्र नाम के योग्य नहीं है, वह तो बस एक महिला है। ऐसा ही है जो एक बच्चे की परवरिश कर रही है, लेकिन वो माँ नहीं, क्योंकि माँ के लिए इसका एक अलग अर्थ होता है। अब मैं सोचता हूँ, यदि आप अब मातृ दिवस के लिए, मैं अपने आप को सचमुच में अच्छी तरह से व्यक्त करना चाहता हूँ। मेरी एक बूढ़ी सफेद बाल वाली माँ है जो वहाँ बैठी हुई है स्वतः, और मैं सोचता हूँ एक दिन अच्छी बात है, लेकिन हर दिन मातृ दिवस होना चाहिए, ना ही बस वर्ष में एक बार। और जो कारण कि ये मातृ दिवस की बातें अभी चल रही है, और मैं देखता हूँ कि हमारे पास बस कुछ मुट्ठी भरी ही है, और हम सब एक दूसरे को जानते हैं, हम घर के ही लोग हैं, और यही कारण है कि हम इस तरह से बात करने जा रहे हैं। मैं सोचता हूँ कि एक माँ को हर दिन उसी तरह से आदर देना चाहिए, ये सही है, एक सच्ची माँ। और लेकिन इस दिन को वे मातृ दिवस कहते हैं। संसार में सिवाय एक बड़े व्यवसायिक बेहुदा चीजों के कुछ भी नहीं है, केवल लोगों से पैसा को निकालने के लिए ऐसा करते हैं, और यह माँ के लिए अपमान की बात है। एक मातृ दिवस जो वर्ष में एक बार होता है, कहते हैं खैर हम उसे मिलने नहीं जाते हैं, लेकिन हम उसे फूलों का एक छोटा सा गुच्छा भेज देंगे और इससे बात खत्म हो जाएगी। यह माँ नहीं है, हे प्रभु, एक सच्ची माँ एक महिला होती है, जिसे आप, एक जिसने आपको पाल पोस कर बड़ा किया है, और आप उससे प्रेम करें, और आप उससे मिलने जाएं, और हर समय उससे बात करें। आप हर समय उसके प्रति अपने प्रेम को व्यक्त करें, न कि वर्ष में केवल एक दिन। लेकिन अब इससे पहले कि मैं अपने छोटे से नाटक को आरंभ करूं, मैं बस इस बात को व्यक्त करना चाहता हूं। और नए सिरे से आप में से कुछ, आप में से बहुत से जा चुके हैं, उसमें से बहुत से चले गए हैं जब से इसे बनाया गया था। यह 1933 में था। क्या आपने कुछ रात पहले अखबार में देखा था जहाँ पर उस महिला ने उस पुरुष को मार डाला, उसे बाहर उसके वाहन के रास्ते में फेंक दिया, और बस उसके ऊपर से उसकी कार को आगे और पीछे करके चलाने लगी, यहाँ तक कि उसने उसे सड़क पर पूरी तरह से कुचल डाला। और उन्होंने कहा, उस वकील और बाकी लोगों ने कहा, क्या यह आपके विवेक को दोषी नहीं ठहराता है? उसने कहा, परमेश्वर और मैं थक गए हैं जिस तरह से महिलाओं के साथ व्यवहार किया जाता है। ओह जी हाँ, महिला एक आदर्श है, ये सही है, थक रहे हैं, ये राष्ट्र कितना नीचे गिर सकता है। मैं सोचता हूँ बिना दिव्य न्याय के हम कितनी दूर तक जा सकते हैं। परमेश्वर और मैं, यदि परमेश्वर उन सारी बेकार बातों के लिए दोषी था जो उस पर डाली गई थी, तो वो परमेश्वर नहीं होता। ऐसा ही है, परमेश्वर और मैं, ओह परमेश्वर का इस तरह की बातों से कोई लेना देना नहीं है। सोचता हूँ कि जब वो वहाँ पीड़ा में होती है, तब वो इस विषय में कैसे सोचेगी। ओह अमेरिका, अब आपको याद है, यदि आपने इसे लिखकर नहीं रखा है तो इसे लिख लें, यह मेरी भविष्यवाणी है। समझे 1933 में जब हम यहाँ सभाएं कर रहे थे, जहाँ पुराने लोग यहाँ पर, मैं सोचता हूँ कि चर्च ऑफ क्राइस्ट अब वहाँ पर है, यह पहले हुआ करती थी, यह ठीक यहाँ पर है भाई नेविल, ठीक वहाँ नीचे, चार्ली कैर्न वहाँ पर रहा करता था। यह क्या है, यहाँ पर मैक्स एवेन्यू पर अनाथालय है। 1933 में मेरे पास 1933 की फोर्ड कार थी और मैंने इसे उस सुबह प्रभु को समर्पित किया था, और घर छोड़ने से पहले मैंने एक दर्शन देखा। मैंने इसे लिख कर रखा है, पुराना पीला कागज अभी भी एक बाइबल में प्रतीक्षा कर रहा है। मैंने देखा कि अंत का समय आ रहा है, और आप कितने लोग याद कर सकते हैं कि एक 33 की कार वहाँ पहले कैसे दिखाई देती थी। ओह, यह एक प्रकार से इस तरह से बाहर निकल गया था और वहाँ पीछे की ओर ऊपर था, और अतिरिक्त टायर को लटकाने के लिए काटा गया था। मैंने एक दर्शन देखा कि प्रभु के आगमन से पहले की कारें एक अड्डे की तरह दिखाई देंगी। कितनों को वह भविष्यवाणी याद है? क्या यहाँ कोई पुराना व्यक्ति बचा है? भाई सेवार्ड जा चुके हैं, और मैं समझता हूँ यह 1933 की बात है जब हम यहाँ पर सभाओं को कर रहे थे। मैं समझता हूँ कि तब से लेकर अब वे सारे लोग जा चुके हैं, और मैंने भविष्यवाणी की कि अमेरिका उनका पहले नंबर का देवता स्त्रियाँ होंगी। यह वही है, हर एक चीज हॉलीवुड के फैशन के अनुसार होती है। मेरे पास FBI की फाइल से रिकॉर्ड पर चीजें हैं जो आपको चौंका देंगी, बस आपको बताने के लिए, ठीक जहां और अनैतिक आचरण या गंदा काम इन फिल्मी सितारों का है, उनमें से शायद एक भी ऐसा नहीं है, लेकिन सारे वेश्यावृत्ति करने वाले हैं, और FBI ने हाल ही में इसका पर्दाफाश किया। मेरे पास यह उनकी खुद की फाइल से रिकॉर्ड है, और इसलिए वे सभी बाहर रह रहे थे, यहाँ तक कि ये फिल्मी सितारे भी, जहाँ उसने साबित किया, उन्होंने वहाँ जाकर और उन्हें गिरफ्तार कर लिया। पुरुषों के साथ रहती हैं, $25 प्रति रात्रि का देते हैं एक व्यक्ति, सारे ऊपर और नीचे रहते हैं हॉलीवुड में, और हर जगह उनके पास खुद के निजी घर थे, और वहाँ पीछे पुरुष रहते थे जहाँ वे उन्हें इन लोगों के पास भेजते थे, और यही है जिसे हम देखते हैं टेलीविजन पर और यहाँ इन सिनेमा के पर्दों और इत्यादि पर, और हमारे बच्चों को कहने देते हैं कि यह एक आदर्श है, और फिर उसे माँ बुलाते हैं। यह एक माँ होने से बहुत दूर की बात है, यह गंदगी है, बिल्कुल ऐसा ही है, और फिर भी उन्होंने दिन को निर्धारित किया है। हम उन्हें, वे जिस तरह के कपड़े पहनते हैं, अमेरिकी महिलाओं को देखें, ठीक उनके जैसे ही कपड़े पहनती हैं और हर एक चीज करती हैं, निश्चय ही, और अमेरिका की देवी एक स्त्री है, ना ही यहोवा, वे इससे मुंह फेर कर दूर चले गए हैं, ना ही अब माँ के लिए, अब इसे एक तरफ रख दें। यह एक पवित्र चीज है जिसके बारे में हम बात करने जा रहे हैं, लेकिन मेरा अर्थ स्त्री से है। और याद रखना, मैं भविष्यवाणी करता हूँ कि उस बड़े पूर्ण विनाश से पहले, जो मैं नहीं कहता कि प्रभु ने मुझे इसे बताया है, लेकिन मैं विश्वास करता हूँ कि कुछ घटित होगा, या तो अब से बीच में, या तो उस समय पर 77 में, यह इस घड़ी में आ सकता है, लेकिन अब से और 77 के बीच में मैं भविष्यवाणी करता हूँ कि या तो एक बड़ा विनाश या पूरी धरती का कुल विनाश अब और 77 के बीच होगा। मैंने इसकी 1933 में भविष्यवाणी की थी। मैंने भविष्यवाणी की थी कि महिलाएं चरित्र भ्रष्ट होती जाएंगी और राष्ट्र गिरता ही जाएगा, और वे माँ के साथ लटके रहती हैं, या जैसे माँ इस तरह से, जब तक वे एक महिला नहीं बन जाती, एक आदर्श नहीं बन जाती, और कुछ समय के बाद कि अमेरिका पर एक स्त्री का शासन होगा। इसे चिन्हित करें और देखें कि क्या यह सही नहीं है, एक महिला राष्ट्रपति का स्थान लेगी, या ऐसा ही कुछ जो कुछ बड़ा उसका अमेरिका में कोई उच्च अधिकार होगा। जब मैं इसे आदर के साथ कहता हूँ, महिलाओं, जब एक महिला रसोई घर से बाहर निकल जाती है तो वह अपने स्थान से बाहर हो जाती है, यह सही है, यही वो स्थान है जहाँ उसे होना है, उसके बाहर उसका कोई स्थान नहीं है। और अब मैं उन पर सख्त नहीं हूँ, लेकिन मैं बस इतना ही बताता हूँ कि सत्य क्या है और बाइबल क्या है। ऐसा हुआ करता था कि पुरुष घर का प्रधान होता था, लेकिन ऐसा बाइबल के दिनों में था, वो अब और प्रधान नहीं है, वह कठपुतली है, या वह, या बच्चे को संभालने वाला, या कुछ और है, और अब नहीं, वे कुत्तों की देखभाल करना चाहते हैं, वे बच्चों के जन्म को रोकने का अभ्यास करते हैं, और एक छोटे से पुराने कुत्ते को हर समय उनकी बाहों में लिए रहती हैं, ताकि आप रात भर इधर उधर जा सकें। मैं माँ के बारे में बात नहीं कर रहा हूँ, परमेश्वर उन्हें आशीष दे, यही है जो अब राष्ट्र को एक साथ बांधे रखती है, बीच राह में जो एक सच्ची अच्छी पवित्र परमेश्वर की उद्धार पाई हुई माँ है, यह सही है। लेकिन शर्म की बात है कि हमारी महिलाएं कितनी बदनाम हो गई हैं। मेरे पास अखबार का एक टुकड़ा है जिसे मैंने इस अंतिम नंबर 2 विश्व युद्ध के बाद रखा। वो टुकड़ा काट के रखा जिसने कहा अमेरिकी महिलाओं की नैतिकता कहाँ चली गई है। उस बाहर के देश में 6 महीने के बाद 5 में से 4 सिपाहियों को उनकी पत्नियों से तलाक दे दिया गया था और उन्होंने किसी और पुरुष से विवाह कर लिया था और उनके लिए बाहर देश से वापस आने का इंतजार भी नहीं कर सकती थी। वहाँ पर सैनिक युद्ध के मैदान में मर रहे थे। वो व्यक्ति जो ऐसा करती है वो माँ कहलाने के योग्य नहीं है, वो पवित्र नाम नहीं, ये नहीं है। इसलिए मुझे हमेशा ही महिलाओं से घृणा करने वाला कहा गया है, लेकिन मैं ऐसा नहीं हूँ। मैं सोचता हूँ कि एक महिला एक अद्भुत चीज है और विशेष रूप से जो एक माँ होती है, लेकिन उन्हें उनके स्थान में होना चाहिए और पुरुष का स्थान नहीं लेना चाहिए और परमेश्वर का स्थान नहीं लेना चाहिए। और आज सुबह मैंने एक होलीनेस कलीसिया को यह कहते हुए सुना कि एक माँ आकाश के तारों पर राज्य करती है और यह सब मैं कल्पना कर सकता हूँ कि कैथोलिक कुआरी मरियम पर ऐसा कर रहे हैं और इसी तरह से आदि आदि जो उन मरी हुई महिलाओं की आराधना करते हैं, संत सिसिलिया और इस तरह से सारे जो कि आत्मिकता का सर्वोच्च रूप है। बस ये सब ऐसा ही है, जो कुछ भी मरे हुए के साथ बिचवाई करता है वो एक आत्मिकतावाद है। इसलिए परमेश्वर और मनुष्य के बीच में केवल एक ही बिचवाई है और वो मसीह यीशु है। ये सही है, कोई और संत नहीं, प्रभु यीशु मसीह के बाहर कुछ भी नहीं, केवल एक ही है जो परमेश्वर और मनुष्य के बीच बिचवाई करने वाला है। लेकिन जब मैं कलीसियाओं को देखता हूँ, यहाँ तक कि पुलपिट के पीछे भी सारी पवित्रता मसीह से लेकर और माँ को दे दी गई है, सारी पवित्रता को ले लिया गया है, तब वे शुरू करते हैं और आप वहाँ पर हैं। इसलिए लेकिन वहाँ एक वास्तविक माँ बचती है, परमेश्वर की स्तुति हो। ठीक वैसे ही जब आप एक ढोंगी को देखते हैं, वहाँ एक वास्तविक मसीह होते हैं जो वास्तव में जीवन को जीता है। जहाँ आपके पास एक भला होता है, आपके पास एक बुरा होता है, यह बिल्कुल सही है। और अब उस प्रकार की माँ और उस प्रकार का बालक, अब हम बाइबल में बात करना चाहते हैं। अब मैं सोचता हूँ आज सुबह हमारे पास यहाँ कितने छोटे लड़के और लड़कियाँ हैं। यदि आपने कल भाई नेविल का प्रसारण सुना है, कितने छोटे लड़के और लड़कियाँ यहाँ आकर और आगे की सीट पर बैठना चाहेंगे जब मैं आपसे बात कर रहा हूँ, क्या आप यहाँ आना चाहेंगे? यहाँ 1, 2, 3, 4, 5 सीटें हैं, एक यहाँ 6 है और यहाँ कुछ थोड़ी सीटें हैं। क्या आप सामने आना चाहेंगे? आप में से कुछ छोटे बच्चे अपनी माँ के बिना आगे आ सकते हैं और यहाँ पर आना चाहेंगे? आपका बहुत बहुत स्वागत है। माताएं आई हैं और वे संडे स्कूल के कमरे में हैं, तो ये ठीक है, हम कुछ मिनटों के लिए रुकेंगे और बात करेंगे और वे कुछ ही मिनटों में बाहर आ जाएंगे और हम बस यहाँ चारों ओर इकट्ठा होंगे। छोटी सी काली और बूरी और नीली आँखें यहाँ ऊपर और उनमें से हर एक से बात करेंगे। अब कितने लोग प्रभु से प्रेम करते हैं, कहें आमीन, तो ठीक है। अब मैं माताओं और बच्चों से बात करना चाहता हूँ और यह उनके लिए निर्देशित है। आज रात्रि यदि प्रभु ने चाहा तो मैं पहले आश्चर्यचकित कामों पर बोलना चाहता हूँ जो यीशु ने किए थे और ये कैसे किए गए थे और किस सामर्थ्य के साथ और उसने क्या किया जब उसने अपना। कितने लोग जानते हैं कि उसने पहला आश्चर्य कर्म क्या किया? सब एक साथ इसे बोलो, पानी को दाखरस में बदल दिया। यह सही बात है, पहला आश्चर्य कर्म जो उसने किया। अब यदि प्रभु ने चाहा तो जिस समय मैं आज सुबह अध्ययन कर रहा था यह मेरे दिमाग में आया, मैं देखता हूँ कि हमारे अच्छे मित्र श्रीमान और श्रीमती येकर वहाँ पीछे हैं। मैं सोचता हूँ आज सुबह मैंने उन पर अभी ध्यान दिया जब मैं स्थान से इस प्रकार घूमा। एक दिन मैंने जांच की, मुझे खुद को विदेश में कार्य करने के लिए परीक्षाओं के लिए तैयार रखना है और जब मैं बाहर आया तो मैं श्रीमान और श्रीमती येकर के अलावा किससे मिला जो वहाँ कार्यालय में बैठे हुए थे। डॉक्टर शोइन लुइसविले में एक बहुत ही भला मसीही भाई है। मैं आपको बताता हूँ, मैं वास्तव में वहाँ एक सच्चे मनुष्य से मिला, एक सच्चा व्यक्ति जो परमेश्वर में विश्वास करता है और अपने भरोसे को वहाँ रखता है। आप जानते हैं क्या, मैं आपको बताऊंगा, मैं प्रचारकों की तुलना में अधिक डॉक्टरों को दिव्य चंगाई में विश्वास करते हुए पाता हूँ। ये सही है, आप उनसे बात करें, कहते हैं निश्चय ही। और जब मैं छोड़कर जाने लगा तो उसने मेरा हाथ पकड़ा, उसने कहा, भाई ब्रैनम, आप मनुष्यता के लिए जितना मैं कभी कर सकता था उससे अधिक करते हैं। उसने कहा, यह ठीक बात है। कहा, आप उन लोगों की सहायता कर सकते हैं जिन्हें मैं छू भी नहीं सकता। कहा, यह सही बात है। मैंने कहा, तो ठीक है, आप टाके दे सकते हैं या एक हड्डी को व्यवस्थित कर सकते हैं या ऐसा ही कुछ, लेकिन परमेश्वर चंगाई को देता है। उसने कहा, यह सही बात है, आमीन। ओह, मैं व्यापक विचारों वाले, समझदार विचार वाले लोगों को देखना पसंद करता हूँ। मैं शल्य चिकित्सा के बारे में और मेडिकल डॉक्टर के बारे में और मांसपेशियों के चिकित्सक, अस्थि चिकित्सक, जीवे चंगाई के बारे में सोचता हूँ और सब कुल मिलाकर यदि इसमें से कोई भी किसी की सहायता कर सकता है तो मैं इसके लिए हूँ। और जब आप एक डॉक्टर को लेते हैं, एक प्रचारक को दोषी ठहराते हैं, प्रचारक एक डॉक्टर को दोषी ठहराता है और एक अस्थि रोग विशेषज्ञ एक शल्य चिकित्सक को दोषी ठहराता है, शल्य चिकित्सक एक चिकित्सक को दोषी ठहराता है। आप इसकी कल्पना कर सकते हैं, कहीं तो कुछ स्वार्थी उद्देश्य है। यह ठीक बात है, क्योंकि उनमें से प्रत्येक ने साबित किया है कि वे किसी की सहायता करते हैं। यह बिल्कुल सही है। अब बात ऐसी है, मैं सोचता हूँ यदि हमारा उद्देश्य सही है और हमारा हृदय लोगों के प्रति सही है, हम सबको एक साथ मिलकर काम करना चाहिए ताकि हमारे साथी मनुष्य की सहायता करें, ताकि एक जीवन को आसान बनाएं। और तब आपका उद्देश्य निस्वार्थ होता है, परमेश्वर को स्तुति देते हुए जो सब कुछ मुफ्त में दे देता है। आमीन। जी हाँ श्रीमान, ओह, हमारे पास कहीं भी कोई स्वार्थ नहीं होना चाहिए, ये सिद्ध रूप से होना चाहिए। यदि कायरोप्रैक्टिक इसकी सहायता कर सकता है और अस्थि रोग विशेषज्ञ इसकी सहायता करते हैं, शल्य चिकित्सा इसकी सहायता करता है और कोई तो उस एक की सहायता कर सकता है, तो आइए इस सब के लिए प्रार्थना करें। आमीन। कि परमेश्वर बस उसके प्रिय लोगों को चंगा करने और खुश रहने में सहायता करे, क्योंकि हमारे पास यहाँ पर ज्यादा समय तक बने रहने का समय नहीं है, बस कुछ ही दिन और हम रास्ते पर हैं, कहीं तो और चले जाते हैं। इसलिए हम जो करने की कोशिश कर रहे हैं, ये जीवन को थोड़ा आसान बनाता है ताकि आपके पास यहाँ रहते हुए एक बेहतर समय हो सके। आमीन। अब इस विचार पर आइए हम अपने सिरों को झुकाएं, इससे पहले कि हम बाइबल को खोलें और अपने प्रिय उद्धारकर्ता से बात करें। हमारे दयालु स्वर्गीय पिता, हम आज सुबह बहुत ही नम्रता से आपकी उपस्थिति में आते हैं और हर एक चीज के ऊपर आपका धन्यवाद करते हैं जो कभी धरती पर था या कभी होगा, प्रभु यीशु मसीह के लिए, क्योंकि वही वो एक था जिसने मनुष्य और परमेश्वर को एक साथ लाया और हमारा मेल मिलाप किया। बेचारे अयोग्य, अधर्मी, परदेशी, परमेश्वर से दूर, हमारे खुद के चुनाव को लेने के द्वारा हमने अपने स्वयं के चुनाव को लिया और उससे दूर चले गए, और वो बहुत ही भला था कि आए। और जब हम परमेश्वर के लिए अप्रिय थे, जबकि हम पापी थे, परमेश्वर से दूर, उसने हमें वापस पिता के साथ मेल मिलाप किया उसके अपने लहू के बहाने के द्वारा। हम उसके लिए कैसे आपका धन्यवाद करें। और आज एक बिचवाई के रूप में खड़ा हुआ है, केवल एक जो परमेश्वर और मनुष्य के बीच में है, जो परमेश्वर की उपस्थिति में प्रार्थना को कर सकता है उसके अपने लहू के मंच के जरिए से, जिसे उसने धरती से महिमा तक के लिए बहाया, इस धरती पर एक खलियान में से होते हुए आया, एक चरनी में जन्मा, मृत्यु दंड में से होते हुए धरती से बाहर चला गया। धरती ने उसे नहीं चाहा, स्वर्ग उसे ग्रहण नहीं कर सका, क्योंकि वो एक पापी था, उसके ऊपर हमारे पाप डाले गए थे। धरती ने उसे नहीं चाहा, उन्होंने उसे अस्वीकार कर दिया, कहा ऐसे व्यक्ति से दूर रहो, उसके पास यहाँ तक कि जन्म लेने के लिए स्थान भी नहीं था या मरने के लिए स्थान भी नहीं था, और वो आकाश और धरती के बीच में लटक गया। स्वर्ग उसे ग्रहण नहीं कर सकता, ना ही धरती उसे ग्रहण कर सकती है, और वो मर गया। जो भी है, हमें पाप से बचाने के लिए, ताकि हमारी बीमारी को चंगा करे, ताकि हमें आनंद दे। और जब हम यहाँ धरती पर हैं, एक आनंददायक प्रवास हो, क्या ही उद्धार करता है। ओह, हम उसके लिए आपको कितना धन्यवाद देते हैं। हे परमेश्वर, हमारे हृदय की हर प्रशंसा और आराधना उस पर उंडेली जाए और केवल उसी पर होने पाए। हर एक आदर और हर एक आराधना, हर एक चीज जो हमारे होठों या हृदय से निकलती है, होने पाए या उस पर रखी जाए जो सारी चीजों के योग्य है। वो जो एक दिन सिंहासन पर बैठा हुआ था, उसके हाथ में किताब के साथ स्वर्ग या धरती में कोई भी मनुष्य योग्य या नहीं कर सकता था, यहाँ तक कि पुस्तक को देख सके या मोहरों को खोल सके जिसने इसे मोहरबंद किया था। और ये मेमना जो घात किया गया था जब पृथ्वी की बुनियाद डाली गई थी, आकर इसे उसके हाथ से ले लिया, मोहरों को खोल दिया और उन वचनों को लोगों के लिए खोल दिया। और पिता, हम आज प्रार्थना करते हैं कि उसका पवित्र आत्मा हमारे हृदयों को उसके सारे अंधकार से छुड़ा ले, हमारी जुबान को उन सब बुराइयों से छुड़ा ले, हमारे सारे पापों को क्षमा करे और सारे अंधकार को दूर करे और इस प्रातः हमारे हृदयों में से हट जाए। और विशेष रूप से ये छोटे बच्चे, परमेश्वर उन्हें आशीष देना जब वे आज सुबह अपनी प्यारी सी माँ के साथ यहाँ बैठे हैं। परमेश्वर, हम किस तरह से आपको मातृत्व के लिए धन्यवाद दें, उस सच्ची महिलाओं के लिए, इस सारे अंधकार और मूर्ति पूजा के बीच में और संसार की गंदगी और भ्रष्टता, फिर भी हमारे पास वास्तविक सच्ची माताएं हैं। हम उनके लिए कैसे आपका धन्यवाद करें? युवा और बूढ़े दोनों ही हम आपको धन्यवाद देते हैं पिता, सच्ची मातृत्व के लिए। और हम प्रार्थना करते हैं परमेश्वर कि आप उन्हें आशीष देंगे। देख रहे हैं, आज सुबह यहाँ बैठे हुए हैं हमारे बहुत से भाई और बहन सफेद गुलाब पहने हुए हैं, या सफेद फूलों का गुच्छा और फूल, जिसका अर्थ है कि उनकी प्रिय संत माँ पर्दे के पार चली गई है, दूसरी ओर है, मरी नहीं है लेकिन हमेशा के लिए जीवित है। किसी दिन वे भी नीचे नदी के पास आ जाएंगे और वहाँ वे उसे फिर से देखेंगे। दूसरी ओर बहुत से लाल गुलाब पहने हुए हैं, उनकी माँ अब भी यहाँ पर है। हम इसके लिए आपका धन्यवाद करते हैं, प्रार्थना करते हैं कि आप हमें एक साथ आशीष देंगे जब हम आपके वचन का अध्ययन करते हैं, क्योंकि हम इसे मसीह के नाम में मांगते हैं, आमीन। अब प्रभु आपको आशीष दे। हम सीधा आज सुबह वचन पर आरंभ करते हैं। अब पहले इस छोटे से नाटक से पहले मैंने माताओं और छोटे बच्चों के लिए सोचा, और भी हो सकता है मुझे सुन रहे हों, क्योंकि इस बात में पूर्ण रूप से एक शिक्षा है। और मैं एक छोटा सा नाटक को बताने जा रहा हूं, क्योंकि मैंने अब अपनी सभाओं पर ध्यान दिया है। कभी कभी नाटक पूरी तरह से सहायता करते हैं, क्या आप ऐसा नहीं सोचते? छोटे बच्चे इससे अच्छी तरह से समझ जाते हैं। मैं कुछ छोटे चमकदार आंखों वाले लड़कों को देख रहा हूं, जो अब बैठे हुए मेरी ओर देख रहे हैं, जो कि आने वाले कल के पुरुष होंगे, यदि कोई आने वाला कल है। और अब इससे पहले हमारे पास कोई नाटक हो या कुछ और जो कलीसिया में बताया जाता है, इसकी अवश्य ही बाइबल की पृष्ठभूमि होनी चाहिए, आमीन, यह अवश्य ही बाइबल की पृष्ठभूमि होनी चाहिए। पहले आइए हम सब मत्ती के 16वें अध्याय और 25वें पद की ओर जाएं और हम इन पदों को पढ़ेंगे। पहले जब हम पढ़ रहे हैं, तैयार हो रहे हैं, हो सकता है उस समय तक वे छोटे बच्चे बाहर आ जाएंगे। अब मत्ती 16:25 हम इसे पढ़ते हैं, क्योंकि जो कोई अपना प्राण बचाना चाहे वो उसे खोएगा, और जो कोई मेरे लिए अपना प्राण खोएगा वो उसे पाएगा। अब यह एक बहुत ही महत्वपूर्ण वचन है, आइए हम सब इसे एक साथ पढ़ें। आप क्या कहते हैं? हर कोई, छोटे बच्चे और सारे, अब एक साथ पढ़ें। क्योंकि जो कोई अपना प्राण बचाना चाहे वो उसे खोएगा, और जो कोई मेरे लिए अपना प्राण खोएगा वो उसे पाएगा। आप जानते हैं लड़के और लड़कियां, और मैं जानता हूं कि बड़े लोग भी इसका उसकी तरह से आनंद लेंगे जैसे बच्चे लेंगे, लेकिन यह वचन बहुत ही महत्वपूर्ण है। और कुछ वचन इतने महत्वपूर्ण हैं कि परमेश्वर इसे चारों सुसमाचारों में डालता है, मत्ती, मरकुस, लुका और यूहन्ना, लेकिन यह इतना महत्वपूर्ण था इतना तक कि उसने इसे 6 बार सुसमाचार में डाला। यह 6 बार उसके अपने खुद के होठों से आया, यीशु के। अब वहाँ मरकुस में, हम वहाँ मरकुस के 8वें अध्याय पर जाएंगे और 34वें पद से आरंभ करेंगे, और मैं वहाँ पर कुछ पढ़ूंगा। और मैं चाहता हूँ कि आप यहाँ फिर से ध्यान दें इस बात को जारी रखते हुए जहाँ यीशु ने इसे बोला था, और याद रखें उसने इसे सुसमाचार में 6 बार लिखा है, इसलिए यह निश्चित होगा। 2 गवाह होते हैं, लेकिन उसने इसे 3 बार डाला है, देखो, इसलिए यह निश्चित ही होगा कि आपको यह याद रहे। और जब उसने वैसे ही भीड़ को और अपने चेलों समेत पास बुलाकर उनसे कहा, जो कोई मेरे पीछे आना चाहे वह अपने आप से इनकार करे और अपना क्रूस उठाकर मेरे पीछे हो ले। अब अनुवादकों में से एक ने डाला, अपना क्रूस उठाकर और प्रतिदिन मेरे पीछे हो ले। अब 35वां पद सुनना, क्योंकि जो कोई अपना प्राण बचाना चाहे वो उसे खोएगा, पर जो कोई मेरे और सुसमाचार के लिए अपना प्राण खोएगा वो उसे बचाएगा। यदि मनुष्य सारे जगत को प्राप्त करे और अपने प्राण की हानि उठाए तो उसे क्या लाभ होगा, या मनुष्य अपने प्राण के बदले क्या देगा। अब आइए इस 35वें पद को लेते हैं और अब इसे एक साथ दोहराएं। तो ठीक है, अब आइए इसे एक साथ कहें। हम मरकुस 8:16 को लेने जा रहे हैं। अब आइए हम इसे एक साथ कहेंगे। मरकुस 8:16, क्षमा करें, मरकुस 8:16 35, नहीं मैंने इसे अभी गलत लिया है। मरकुस 8, मुझे क्षमा करें, मरकुस संत मरकुस 8:35। अब आइए इसे करने की कोशिश करते हैं। संत मरकुस 8:35 अब हमें मिल गया। आइए इसे पढ़ते हैं। क्योंकि जो कोई अपना प्राण बचाना चाहे वो उसे खोएगा, पर जो कोई मेरे और सुसमाचार के लिए अपना प्राण खोएगा वो उसे बचाएगा। यह अद्भुत है। अब हम अपनी छोटी सी कहानी के साथ आगे बढ़ेंगे और जैसे ही बच्चे आकर वे अपने स्थान को ले लेंगे, प्रबंधक लोग उन्हें देखते हैं। जब वे शांति से, आप देखते हैं कि क्या आप उन्हें यहाँ पर ला सकते हैं, जबकि हम लेते हैं और अपनी कहानी पर जाते हैं। हम इसे आज सुबह एक नाटक पर आधारित करने जा रहे हैं और मैं बहुत सी बार यहाँ कुछ दिनों पहले मैं भाई और बहन वुड मेरे साथ थे, मैं विश्वास करता हूँ, वहाँ पिछली सभा में, और मैं क्रिश्चियन बिजनेसमैन के नाश्ते में बोल रहा था और मैंने जक्कई का एक छोटे से नाटक रूप को दिया जो ऊपर गुल्लड़ के पेड़ में था। और जब यीशु वहाँ से गुजरा और उसके पास कैसे एक कूड़े का डिब्बा है आप जानते हैं, और इसे नाटकीय रूप से बताया और एक पेड़ पर चढ़ गया यीशु को देखने के लिए। वो व्यापारी जो पेड़ पर बैठा हुआ था, आप जानते हैं, वो यीशु से छिप रहा था और यीशु नहीं जानता था कि वो कहाँ पर था, जैसे कि आप समझ रहे हैं। और फिर उसने कहा, ओह, उन्होंने मुझे बताया था कि वो मनुष्य चीजों को जानता है और चीजों को पहले से बता सकता है और जानता है कि मछली के पास सिक्का कहाँ था, मैं इसका विश्वास नहीं करता। और यीशु ठीक पेड़ के नीचे चलकर गया और उसने कहा, ओह, वह मुझे नहीं देख सकता, मैं एक पेड़ पर बैठा हुआ हूँ। यीशु रुक गया और ऊपर की ओर देखा, कहा, जक्कई, नीचे आ। केवल इतना ही नहीं जानता था कि वो वहाँ पर था, लेकिन वो यह भी जानता था कि वो कौन था। इसलिए मैं सोचता हूँ कि एक छोटा सा नाटक कभी कभी बूढ़े लोगों की, बड़े लड़के और लड़कियाँ, वैसे ही जैसे युवा की सहायता करता है। इसलिए अब आप मुझसे इसके समाप्त होने के बाद पूछ सकते हैं, भाई ब्रैनम, आपको इन बाइबल के पात्रों और नामों की यह जानकारी कहाँ से मिलती है? उनमें से कुछ मुझे मेरे अच्छे मित्र भाई बूथ क्लीबॉर्न के द्वारा सहायता मिलती है, और दूसरा जोसेफस के द्वारा, जो महान इतिहासकार है, और फिर इतिहास पर किताबें इस घटना की जो मैंने पढ़ी है और इत्यादि। और इसी तरह से मुझे मेरी जानकारी मिलती है जो हम आज सुबह नाटक में देने जा रहे हैं। इसके लिए मैं देख रहा हूँ कि हमारे छोटे बच्चे अब बाहर आ रहे हैं और आज सुबह इस कहानी के लिए जो हम बताने जा रहे हैं। अब आप छोटे लड़के और लड़कियाँ, यदि आप ऐसा कर सकते हैं, जितने भी चाहते हैं, ठीक यहाँ सामने आ जाएं। हमारे पास 5 या 6 खाली सीटें हैं। यदि आप ठीक यहाँ पर आना चाहते हैं तो हमें आपको यहाँ पाकर खुशी होगी। वे बस समय पर आ रहे हैं यहाँ छोटे नाटक के लिए। और अब इसी तरह से मुझे जानकारी मिलती है, मैं इसे ऐसे ही ढूंढता हूँ, हो सकता है कोई वहाँ से उठाकर और कहेगा, तो ठीक है, मैंने बाइबल के उस भाग को कभी नहीं पढ़ा। लेकिन यदि आपने नहीं पढ़ा तो इतिहास ने इसे उठाया है, आप देखना। तो ये सब एक ही कहानी है, केवल ऐसा है कि एक छोटे से नाटक के रूप में दिया गया है। और सो ऐसा ही है, यही है। ये आपका छोटा भाई है? ओह, ये बिल्कुल तुम्हारे जैसा ही दिखाई देता है, और वो एक अच्छा लड़का है, आप बस बता सकते हैं कि वो है। तो ठीक है, अब आप यहाँ आकर और यहाँ बैठना चाहते हैं? वहाँ 2 छोटी लड़कियाँ हैं या 3 छोटी लड़कियाँ हैं? ओह, ये बस अच्छा है और बढ़िया है। अब मैं चाहता हूँ ये छोटी सी कहानी आज सुबह छोटी लड़कियों और लड़कों के लिए है। मिसेस कॉलिंस, मैं सोचता हूँ कि वहाँ पर आप हैं, और दूसरी छोटी बहन, आप ठीक वहाँ पर जाना चाहती हो प्रिय, और बैठ जाएं? जी हाँ, मैं सोचता हूँ कि ठीक यहाँ पर एक स्थान है। यदि वो महिला अपनी छोटी सी किताब को हटा ले और फिर ठीक यहाँ पर यहाँ पर कुछ सीटें हैं। मैं चाहता हूँ कि ये सारे छोटे लड़के और लड़कियाँ यहाँ सामने हों, ताकि मैं उनसे बात कर सकूँ। यहाँ हमारे पास यहाँ कुछ कुर्सियाँ हैं, हम बस देखते हैं कि आपके पास कुछ कुर्सियाँ हैं। जी हाँ श्रीमान, उनमें से कुछ लोग ठीक यहाँ हमारी सहायता करेंगे। सो हम चाहते हैं कि यह इन छोटे लड़कों और लड़कियों के लिए हो। ओ प्रभु, क्या यह ठीक नहीं है? अब यह मैं सोचता हूँ कि आपके पास कुछ और होंगे। भाई नेविल, मैं कुछ और लोगों को आगे आते हुए देखता हूँ और अब ठीक है। यहाँ पर कितनी माताएं हैं? अपने हाथ उठाएं। ओह, यह अद्भुत है। अब यह बस अच्छा है और बढ़िया बात है। अब यदि पीछे छोटी लड़कियाँ यहाँ आगे आना चाहती हैं, ठीक आगे आ जाएं। यदि आप इतनी बड़ी हो गई हैं कि माँ से दूर रह सकती हैं और माँ आपको यहाँ पर आगे लाना चाहती हैं, तो ठीक है, उससे कहें कि ठीक आगे आएं। यह उन माँ के लिए भी है, तो ठीक है। अब मैं आपको बताता हूँ, बच्चों, हमने अभी एक पद को पढ़ा है। क्या आप सब इसे मेरे साथ दोहराना चाहेंगे? क्या आप सब मेरे साथ इस पद को दोहराना चाहेंगे? अब यह संत मती के 16वें अध्याय और 25वें पद में पाया जाता है, जिसके बारे में हम बात करने जा रहे हैं। अब ये छोटा, हर एक छोटा लड़का और लड़की आज सुबह अब मेरे साथ इसे दोहराए, कहे संत मती 16वां अध्याय 25वां पद। अब आप मेरे साथ दोहराएं, क्योंकि जो कोई अपना जीवन बचाना चाहे वो उसे खोएगा, और जो कोई मेरे कारण अपना जीवन खोएगा वो उसे बचाएगा, इसे बचाएगा। आइए इसे फिर से कहें, जो कोई भी मेरे कारण अपना जीवन खोएगा वो उसे बचाएगा। अद्भुत है। अब लड़के और लड़कियां, आप जानते हैं क्या, संसार में बहुत सारी चीजें हैं जो वास्तव में मूल्यवान हैं, और उन चीजों में से एक है, यह आज आपके पास है, यह वो प्राण है जो उस शरीर के अंदर है, और यही आपके लिए संसार की सबसे मूल्यवान चीज है। क्या यह सही है माताएं? कहें आमीन। सबसे मूल्यवान चीज जो आपके पास है वो आपका प्राण है, और अब यदि आप अपने प्राण को बचाते हैं तो आप इसे खोने जा रहे हैं, और यदि आप अपने प्राण को खो देते हैं तो आप इसे बचाने जा रहे हैं। यदि आप अपना प्राण यीशु के लिए खो देते हैं, देखो, दूसरे शब्दों में, यदि आप यीशु पर विश्वास करते हैं तो आप उसके चेले बन जाते हैं, और फिर यदि आप अपना जीवन यीशु को देते हैं, जब आप इस तरह के नौजवान होते हैं, और फिर आप वो इसे अनंत जीवन के लिए बचाने जा रहा है। लेकिन यदि आप इसे रखना चाहते हैं तो आप इसे खोने जा रहे हैं। जी हाँ, आप हार जाएंगे। आप इन दूसरी लड़कियों और लड़कों की तरह व्यवहार करना चाहते हैं जो यहाँ पर हैं, और बाहर जाकर और जिस तरह से वे करते हैं वैसा ही आप करते हैं, तब आप इसे खोने जा रहे हैं। लेकिन यदि आप अपना जीवन यीशु को देना चाहते हैं तो आप इसे अनंतता के लिए और हमेशा के लिए बचाने जा रहे हैं। अब आपको याद है कि अब कि यह सारे संसार में सबसे मूल्यवान चीज है जो आपका छोटा सा प्राण है, और यदि आप इसे बचाते हैं तो आप इसे खो देंगे। यदि आप इसे यीशु को देते हैं तो आप इसे बचाते हैं। क्या आप मेरे साथ ऐसा कह सकते हैं? यदि कहते हैं, यदि मैं इसे बचाता हूँ तो मैं इसे खो दूंगा, और यदि मैं इसे यीशु को देता हूँ तो मैं इसे बचा लूंगा। ऐसा ही है। अब आप इसे समझ गए? क्या ऐसा नहीं? सारी माताएं जो सोचती हैं कि यह अच्छा था, कहें आमीन। ओह, यह अच्छी बात है, यह अच्छा है। अब आप देखिए, वहाँ एक चीज है जो आप कर सकते हैं। अब आप आगे बढ़ें। यदि वे इस तरह का व्यवहार करना चाहते हैं, और उनके पास संसार के चाहने वाले, यदि लड़के और लड़कियां वहां जाकर और चीजों को करना चाहते हैं और कहानियों को सुनाते हैं और ऐसी बातें कहते हैं जो गलत है, और धोखा देते हैं और चोरी करते हैं और बुरे काम करते हैं और स्कूल में नकल करते हैं और इत्यादि, आगे बढ़ते हैं, वे खो देते हैं, वे इसे खो देते हैं। लेकिन यदि आप इसे यीशु को देंगे तो वे ऐसा नहीं करेंगे, और तब यह इसे बचा लेगा। यही है जो आप करना चाहते हैं, क्या ऐसा नहीं है? अब हम अपनी छोटी सी कहानी से आरंभ करने जा रहे हैं। अब यह हमारी पृष्ठभूमि है। अब आप यह याद रखें। अब आइए हम अपनी छोटी सी कहानी को आरंभ करते हैं। अब बुजुर्ग लोगों के लिए और उन पिताओं और माताओं के लिए, आप भी अब सुनना, आप विशेष रूप से, आप जो माता और पिता हैं, अब बस और हम आरंभ करेंगे। आप छोटी कहानियों को पसंद करते हैं? क्या आप करते हैं? ओह। मैं बस उन्हें पसंद करता हूँ। विशेष रूप से अब आपने बहुत सी कहानियाँ पढ़ी हैं जो कि सत्य नहीं है, लेकिन यह कहानी सच्ची है, पूरी तरह से सत्य है। इसका हर एक वचन यह परमेश्वर की बाइबल में है, इसलिए इसे सत्य होना ही है। देखो, क्योंकि यह परमेश्वर का वचन है, परमेश्वर का वचन सत्य है। अब आप जानते हैं, कहा मैं बहुत ही थक गया हूँ, मैं इतना थक गया हूँ कि मर जाऊँ। तो ठीक है, कहा आप सीढ़ियों से ऊपर जाकर और बिस्तर पर क्यों नहीं चले जाते, खाट पर लेट जाओ, वहाँ ऊपर सोफा है, और बिस्तर पर चले जाओ। उसने कहा, लेकिन ओह मैं बहुत ही थक गया हूँ। उसने कहा, ओह प्रिय, यदि तुमने देखा होता जो मैंने आज देखा है, ओह मैं यहाँ तक कुछ खाना भी नहीं खाना चाहता। ओह यह भयानक है, वो दृश्य जो मैंने आज देखा। कहा, अच्छा ये क्या था जो आपने देखा? कहा, तो ठीक है, मैं तुम्हें बच्चों के सामने नहीं बता सकता। ओह यह बहुत ही भयानक है, ओह यह बुरा था। अच्छा ये क्या था जो आपने देखा? खैर, मैं सीढ़ियों से ऊपर जा रहा हूँ और थोड़ी देर के लिए लेटा रहूँगा, और फिर रात्रि भोज के बाद जब हम बच्चों को बिस्तर पर लिटाते हैं, तब मैं तुम्हें बताऊँगा कि आज क्या हुआ है। अच्छी बात है, उसने कहा, और वो सीढ़ियों से ऊपर चला गया, वो लेट गया। ओह बहुत ही थक गया। ओह प्रभु, आप जानते हैं कि पिता कैसे करते हैं जब वो थक जाते हैं, बस वास्तव में थक जाते हैं। और थोड़ी देर के बाद छोटी चमकदार आंखों वाली लड़की वह उस मंजिल पर इधर उधर भागने लगी और थोड़ा जोर से बात करने लगी। कहा, ऐसा मत करो, तुम पापा को उठा दोगी। और ओह वो बहुत ही थके हुए हैं, यहाँ तक कि वो मरना चाहते हैं, वो अब और नहीं जीना चाहते। और यदि पिता इतने थके हुए होते हैं तो हमें उन्हें थोड़ी देर के लिए सोने देना चाहिए, उन्हें मत जगाओ। और छोटी सी मरियम वो वहाँ जाकर और बैठ जाती है बिल्कुल शांत होकर। और थोड़ी देर के बाद उसने रात्रि का भोजन पूरी तरह से तैयार कर लिया था, इसलिए वो सीढ़ियों से ऊपर गई और वो उसे बुलाती है, अमराम। और उसने कहा, हाँ योकेबेद, मैं यही हूँ, मैं नीचे आ रहा हूँ। इसलिए वे सीढ़ियों से नीचे उतर आए, आप जानते हैं, और उन्होंने अच्छी तरह से रात्रि का भोजन खाया था। तो जब उन्होंने रात का खाना खा लिया और उस छोटे लड़के और छोटी लड़की ने अपना खाना खा लिया था, क्यों वे माँ ने चीजों को उनसे दूर हटाया और उसने उन्हें पलंग में डाल दिया। और फिर वह कमरे में चली जाती है और वो और उसका पति और वे बैठ जाते हैं। कहा, तो ठीक है, अब ये क्या था जो आपने आज देखा अमराम, जिसने आज रात आपको इतना परेशान कर दिया है कि आपने जीना भी नहीं चाहा? ओह उसने कहा, प्रिय मैं बस इसे नहीं समझ सकता। उसने कहा, मैंने देखा तो हम इसे हर दिन देखते हैं, लेकिन आज विशेष रूप से था। कहा, ओह मैंने अब तक का सबसे भयानक दृश्य देखा है। कहा, बेचारे हमारे लड़के, उनमें से कुछ जो 12 वर्ष से अधिक उम्र के भी नहीं थे, उस बड़ी पुरानी माल ढोने वाली गाड़ी को खींच रहे थे उस रस्सियों के साथ जो उनके गले में इस तरह से लगी हुई थी, और उन बेचारे बच्चों ने इतना खींच लिया था, यहाँ तक कि वे और अधिक नहीं खींच सक रहे थे। उस बहुत ही बड़े ढलान पर वहाँ उसमें पीछे वे बड़े पत्थर थे और वे आगे नहीं जा पा रहे थे। और थोड़ी देर के बाद माल ढोने वाली गाड़ी तेज आवाज करने लगी और बहुत ही धीमी गति से चलने लगी, और थोड़ी देर बाद यह रुक गई। रास्ते में एक व्यक्ति आया, ओह वो एक पागल था। वो गरजने लगा, तुम इस माल गाड़ी को क्यों रोक रहे हो? फटका मारा उन्हें उन बड़े से सांपों के जैसे कोड़े के साथ, और इसे पीठ की ओर मारता है और उनकी पीठ से लहू बहने लगता है और इस तरह से नीचे की ओर गिरता है, और वे बेचारे बच्चे बस इस रस्सी पर लटके रहते हैं और रोने लगते हैं। कहा, ओह योकेबेद, हम माताएं क्या कर सकती हैं? कहा, हम परमेश्वर के लोग हैं, परमेश्वर ने हमें आशीषित किया है, हम अब्राहम इजाक और याकूब की संतान हैं, और क्यों हमें यहाँ इन चीजों का गुलाम होना पड़ेगा? ओह यह तो भयानक है कि किस तरह से वे बेचारे लड़के रो रहे थे। ओह और मैं प्रार्थना करता हूँ और प्रार्थना करता हूँ और मैं प्रार्थना करता हूँ योकेबेद, और ऐसा प्रतीत होता है जैसे कि परमेश्वर बस मेरी सुनता ही नहीं। मैं प्रार्थना करता हूँ और मैं प्रार्थना करता हूँ, और वो ऐसा दिखाई देता है जैसे उसने अपने कानों को बहरा कर दिया है, वो मेरी बिल्कुल भी नहीं सुनता। वो ऐसा दिखाई पड़ता है कि वो अब और चिंता नहीं करता है। अब उसने कहा, देखो अमराम, यह ऐसा नहीं दिखाई पड़ता जैसे आप अब बोल रहे हैं। आप एक सच्चे पिता हैं, और आप यह ऐसा नहीं दिखाई पड़ता जैसे अब आप बोल रहे हैं, क्योंकि आप हमेशा हमें प्रोत्साहित करते आए हैं, हमें परमेश्वर में विश्वास रखने के लिए कहते हैं। ओह लेकिन प्रिय, जब मैं बहुत अधिक प्रार्थना करता हूँ और फिर भी परमेश्वर मेरी नहीं सुनता, और ऐसा दिखाई देता है कि यह हर समय और बदतर होता जा रहा है। जितना अधिक मैं प्रार्थना करता हूँ यह उतना ही बदतर होता जाता है। लेकिन छोटे लड़के और लड़कियों, क्या परमेश्वर प्रार्थना को सुनता है? वह प्रार्थना को सुनता है। क्या परमेश्वर प्रार्थना का उत्तर देता है? जी हाँ। क्या वह बहुत जल्दी उत्तर देता है? ना ही हर समय। क्या वो देता है? नहीं। कभी कभी वो हमें प्रतीक्षा करवाता है, क्या ये सही है? लेकिन परमेश्वर प्रार्थना का उत्तर देता है। क्या वो नहीं देता? और केवल इसलिए कि हर एक चीज गलत हो रही है, यह कोई चिन्ह नहीं है कि हमें प्रार्थना करना छोड़ देना चाहिए। हमें बस प्रार्थना करते रहना है, जो भी है। क्या हमें नहीं करना है? ये सही है। अब आपने सही उत्तर को दिया। परमेश्वर प्रार्थना का उत्तर देता है। आइए हम सब इसे एक साथ कहें, परमेश्वर प्रार्थना का उत्तर देता है। जी हाँ, कोई फर्क नहीं पड़ता कि परिस्थितियाँ जो भी हैं, कुछ भी हो, वो उत्तर देता है। तो ठीक है, तो क्या आप फिर से प्रार्थना करने जा रहे हैं? हाँ। और पिता के पास वहाँ ऊपर अटारी में एक गुप्त कमरा था जहाँ वो प्रार्थना करने जाता है। इसलिए वो उस रात्रि वहाँ पर उठ जाता है। वो एक और घुटने को टेकता है। उसने कहा योकोबेद, अब तुम जाकर और बिस्तर पर चली जाओ, और तुम और बच्चे, इसलिए मुझे परेशान न करना। मैं प्रार्थना करने जा रहा हूँ, हो सकता है आज रात सारी रात करूँगा। सो वो अपने घुटनों पर आ जाता है और वो प्रार्थना करता है और प्रार्थना करता है। मैं उसे उसके हाथों को ऊपर उठाते हुए देखता हूँ और कहता है, ओ अब्राहम, इजाक और याकूब के परमेश्वर, अपने लोगों के लिए अपनी प्रतिज्ञा को याद करें। यहाँ पर हम यहाँ नीचे मिस्र में हैं और हम गुलामी के नीचे हैं, और ओह हमारे निर्दयी शक्ति से काम लेने वाले, वे हमें चीजों को करवाते हैं और हमें पीटते रहते हैं, और हमारे बेचारे लोगों को नंगा कर दिया जाता है, और वे हमें चाबुक से कोड़े मारते हैं, और हम आपके लोग हैं। ओह परमेश्वर, निश्चय ही आप प्रार्थना को सुनेंगे, निश्चय ही आप प्रार्थना का उत्तर देंगे। और मैं प्रार्थना करता हूँ, और मैं प्रार्थना करता हूँ, और मैं प्रार्थना करता हूँ, और आपसे ऐसा प्रतीत होता है कि आप मुझे उत्तर भी नहीं देते हैं। लेकिन परमेश्वर, मैं विश्वास करता हूँ कि आप परमेश्वर हैं और आप अंत में प्रार्थना का उत्तर देंगे। और उसने लगभग सारी रात इसी तरह से प्रार्थना की, और अगली सुबह लगभग 3 या 4 बजे वह छोटी सी सीढ़ियों से नीचे आता है, और वो वहाँ पर देखता है, और वहाँ उसकी प्यारी सी छोटी पत्नी थी, छोटी योकोबेद, वो वहाँ बिस्तर पर सो रही थी, और छोटा हारून और छोटी मरियम पहले से ही बिस्तर में लेटे हुए थे। इसलिए वे उतनी ही नींद में थे जितने वे हो सकते थे, और सो रहे थे। तो ठीक है, वो उससे कहता है, उसने कहा, देर हो रही है और आप बस? हाँ, मैंने सारी रात प्रार्थना की है। उसकी आंखें आंसुओं से खराब हो गई थी क्योंकि वह लोगों के लिए रोया था। और उसने कहा, देखो अम्राम, आपको इस बात पर ज्यादा जोर नहीं देना चाहिए। अब उसने कहा, सुनना प्रिय, ये अच्छा है, लेकिन अब देखो, तुम्हारे पास यहाँ पर पालन पोषण करने के लिए 2 बच्चे हैं और बोझ मेरा है। यदि कोई हमारे बेचारे लोगों के लिए प्रार्थना नहीं करता है तो उनका क्या होगा? क्या होगा यदि किसी के पास हृदय में लोग नहीं हैं? किसी को तो प्रार्थना करनी है। तो ठीक है, वो कहती है, अम्राम, सारा बोझ आपका नहीं है। अच्छा ऐसा प्रतीत होता है, और कुछ भी हो, जो भी है, मैं हर समय प्रार्थना करूंगा। उस दिन वो काम पर जाता है, और हर दिन वो आकर और चला जाता है, और उसी पुराने कठोर परिश्रम को करता है। और उसके पास एक कठिन काम था, उसे करना होता था। वे बड़े बड़े सांचों में ईंटों का मसाला डालते, और उसे वहाँ उस बड़ी भट्टी के पास खड़ा रहना पड़ता था। जब वे इसे खोलते, ओ प्रभु, ये लगभग उसकी खाल को जला देता। इतना भयानक गर्म, वो उन ईंटों को वहाँ पीछे ढकेलता और उन्हें तपाता, उन्हें बाहर लाता, जिससे बड़े विशाल मार्ग और बड़ी बड़ी ऊंची मीनारें, देवताओं की मूर्ति और हर एक चीज को बनाते। और ये सच्चा मसीही मनुष्य वहाँ इस प्रकार से शत्रु के लिए काम को करता है। लेकिन वो एक गुलाम था, वो बंधुआई में था, उसे ये करना पड़ता था। हर रात्रि जब वो घर पर आता तो वो प्रार्थना करता, और फिर से सीढ़ियों से ऊपर जाता और प्रार्थना करता और प्रार्थना करता और प्रार्थना करता, और वापस नीचे आता। कुछ भी सही नहीं होता, खराब होता जा रहा था। और एक दिन वहाँ काम पर उसने एक अफवाह को सुना, कहा, ये क्या है, ये क्या है, मुझे बताओ। किसी ने दूसरे जन से फुसफुसाया। थोड़ी देर के बाद, इससे पहले कि दिन ढलता, यह सारे देश भर में चला गया था जो होने जा रहा था। यह क्या था? उस रात एक विचार सभा की बैठक होने जा रही थी। पुराना राजा फिरौन, वो पुराना दुष्ट राजा, उसके सारे लोगों को एक साथ बुलाने जा रहा था, और एक और बड़ी सभा को करने जा रहा था। सो उनके पास वहाँ पर इस बड़ी विचार सभा की बैठक थी। तो उस रात वो अंदर गया। ओह, वह बस पूरी तरह से उदास था। वह अंदर जाता है और उसकी पत्नी कहती है, अमराम प्रिय, वो उससे दरवाजे पर मिली और उसे चूमा और कहा, मैंने बहुत ही अच्छा और गर्म भोजन बनाया है, लेकिन कहा, प्रिय आप बहुत मुरझाए हुए से दिखाई पड़ रहे हो, क्या बात है? कहा, ओ योकेबेद, यदि तुम केवल यह जान जाओगी कि क्या हो रहा है। ओह, यह पहले से भी बदतर है। क्या? इसे नहीं बता सकता, बच्चे आसपास हैं, रात्रि भोज के बाद तक प्रतीक्षा करना और मैं तुम्हें इसके बारे में बताऊंगा। ठीक है। सो उसने भोजन को तैयार किया था और रात्रि का भोजन किया और सारे बालकों को लेकर और उन्हें बिस्तर पर लिटा दिया। सो वे अंदर चले गए। उसने कहा, योकेबेद, मैं तुम्हें कुछ बताना चाहता हूँ। कहा, एक सबसे भयानक बात घटित हो रही है। क्या? कहा, आज रात्रि उनकी एक और विचार सभा होने जा रही है और जब वे ऐसा करते हैं तो वे हम लोगों पर कुछ और बोझ डालने जा रहे हैं। तो फिर आओ हम राजा के महल में जाएं। राजा फिरौन उन सबको वहाँ बाहर बुलाता है और कहा, तो ठीक है, तुम सारे सेनापति, तुम्हारे साथ यहाँ क्या मामला है? मैं यहाँ पर अपने आदेश को देता हूँ। यह लोग हर समय बढ़ते ही जा रहे हैं, क्या बात है? क्या हम इसे नहीं रोक सकते? कहा, किसी दिन यहाँ दूसरी सेना खड़ी हो जाएगी और हमारे ये सारे शत्रु जो वहाँ गोशिन से वहाँ पर हैं, ये इजरायली लोग अपने आप को इस सेना के साथ जोड़ देंगे और वे हम पर विजय को पाएंगे और हमारी बड़ी अर्थव्यवस्था टूट जाएगी, हमारा बड़ा राज्य नष्ट हो जाएगा, वे हम पर कब्जा कर लेंगे। तुम्हारे साथ क्या मामला है? कोई तो बोलो, क्या तुम कुछ भी कहना नहीं जानते? ओह, वह बुरा था और बहुत ही बुरा था। सारे जनरल कांप रहे थे। उनमें से एक उठ खड़ा हुआ और कहा, राजा फिरौन लंबे समय तक जीवित रहे, तो ठीक है, कहो तुम क्या कहने जा रहे हो? कहा, राजा लंबे समय तक जीवित रहे, महामहिम श्रीमान। उसने कहा, मैं चाहता हूँ कि आप लोगों के ऊपर और अधिक बोझ को डालें। तुम मूर्ख हो, तुमने पहले से ही लोगों पर बहुत सा बोझ डाला है और फिर भी वे बढ़ते जा रहे हैं, क्यों? तुम, यदि तुम्हारे पास यही सारे विचार हैं, तो बस इसे अपने तक ही सीमित रखो। ओह, वो कठोर था। थोड़ी देर बाद एक उठा, उसके चेहरे पर बड़ी मुस्कान थी जैसे कि शैतान, और उसने कहा, राजा फिरौन लंबे समय तक जीवित रहे। कहा, मेरे पास विचार है। कहा, अच्छा बोलो, वहाँ इस तरह से मत खड़े रहो। उसने कहा, मैं आपको बताऊंगा कि हम क्या कर सकते हैं। कहा, आप जानते हैं ये लोग बहुत तेजी से बढ़ते जा रहे हैं। हाँ, ये सही है। कहा, उनमें से कुछ ऐसे हैं, उनके कुछ लोगों के पास यहाँ तक कि 14 बच्चे भी हैं, कभी तो उनके 20 बच्चे होते हैं, और हमारे लोगों के पास शायद एक भी नहीं है। कहा, वे इतनी तेजी से बढ़ रहे हैं, वे बस पूरे देश तक फैलते जा रहे हैं। देखो, परमेश्वर कुछ तो कर रहा था। देखो, परमेश्वर हमेशा ही शैतान की आंखों के ऊपर धूल झोंकता है, आप देखते हैं, समझे? वह जानता है कि वो क्या कर रहा है। देखा, और ये सारी स्त्रियां, बस बहुत सारे बच्चे हैं। क्यों? उसने कहा, राजा लंबे समय तक जीवित रहे, तो मैं आपको बताऊंगा क्या। हर बार एक स्त्री एक छोटे लड़के को जन्म देती है यहाँ देश में जाकर, और कुछ महिलाओं को ले जो नहीं, वे जो माँ नहीं है। आप देखिए, वे स्त्रियाँ जिनके कभी बच्चे नहीं हुए, वे स्त्रियाँ जो बच्चे नहीं चाहती और बच्चों से प्रेम नहीं करती, पुरानी लंबी नाक वाली राक्षसी। देखो, नाक लंबी हो, ऊंची, पुरानी लंबी उंगलियाँ, रंगे हुए चेहरे, और उन्हें ले, वे नहीं जानती कि माँ का प्रेम क्या होता है। तो फिर जब एक छोटा सा लड़का जन्म ले रहा होता है, इसलिए उन्हें जाकर और उस छोटे से बालक लड़के को लेने दो और उसे बाहर लाकर और उसके सिर को दीवार से पटक कर उसे घर में वापस इस तरह से माँ के पास फेंकने दो, उसे एक बड़े से कुएं में फेंक दो। ओह, इससे अच्छा है उसे बाहर ले जाकर और उसके हाथ और पैर को बांध दो और उसे बाहर फेंक दो और मगरमच्छों को मोटा करो, इससे छुटकारा पाने का यही तरीका है। तब वे बहुत अधिक नहीं बढ़ेंगे क्योंकि वहाँ कोई मनुष्य नहीं बचेगा, सारे छोटे बच्चों को मार डालेंगे। ओह, फिरौन कहता है, यह अच्छी बात है, यह एक अच्छा विचार है। देखा, शैतान क्या है, वह दुष्ट है, क्या वो नहीं है? कहा, तो यही वो चीज है जो करना है। जाओ, तुम्हें मिल गया। अब क्योंकि तुम्हारे पास विचार था, मैं अब तुम्हें इसका अध्यक्ष बनाऊंगा। तुम बाहर जाकर और उन सभी महिलाओं को लो जिनके विषय में तुम जानते हो, जो कभी भी माताएं नहीं रही हैं और वे बच्चों से प्रेम नहीं करती हैं, और वे आप देखिए, एक बच्चे से प्रेम करने के लिए एक माँ होने की आवश्यकता होती है। आपको याद है कि माँ ने आपसे कितना प्रेम किया है, तो ठीक है, अब देखो माँ छोटे बच्चों से प्रेम करती है, लेकिन उन्हें किसी को तो लेना था कि जिनके पास नहीं थी, जिसकी कोई संतान नहीं थी, कोई संतान को नहीं चाहती थी, केवल केवल वास्तव में पुरानी सी बुरी स्त्रियां, और कहा उन्हें जांच पड़ताल करने वाला बनाओ, और जब तुम उन्हें जांच पड़ताल करने वाला बनाते हो और उन्हें आदेश दो कि वे किसी भी घर में जा सकती हैं, जहां भी वे चाहें, और हर एक छोटे बच्चे को बाहर निकालकर और उसके सिर को दीवार से पटक कर और इसे मगरमच्छों को खाने के लिए दे दो, हर एक छोटा बालक, ओह कितना क्रूर, फिर आप जानते हैं कि उन्होंने क्या किया, तो ठीक है, ये अच्छा है। फिर अगले दिन जब अमराम वहाँ पर काम कर रहा था, उसने सुना कि आदेश को जारी कर दिया गया था, ओह वो घर जाता है, उसने कहा ओह योकेवेद, ओह प्रिय, मुझे तुम्हें कुछ बताने दो, तुम जानती हो कि वो आदेश क्या था जो जारी किया गया कि सारे छोटे बालकों को मार डालें, और उसने पत्नी को बताया, कहा ओह मैं इसे बर्दाश्त नहीं कर सकता, वह फिर से प्रार्थना करने के लिए सीढ़ियों से ऊपर चला गया। उस रात उसने ऐसी प्रार्थना की जैसे उसने पहले कभी नहीं की थी, क्या हमें प्रार्थना करते रहना चाहिए, ओह प्रार्थना करते रहो, क्या यह सही है, बस प्रार्थना करते रहें, कोई फर्क नहीं पड़ता कि क्या हो रहा है, प्रार्थना करते रहो। अब और पहली बात जो आप जानते हैं, उसने सारी रात प्रार्थना की, ओह परमेश्वर दया करें, सहायता करें, परमेश्वर हम प्रार्थना करते हैं कि आप हमारी किसी तरह से सहायता करेंगे। वापस वो नीचे आया लगभग दिन के उजाले के आसपास, दिन ब दिन, और ओह देश भर में क्या ही शोर हो रहा है, हर दिन वे माताओं को चिल्लाते हुए सुन रहे थे, ऊपर और नीचे सड़कों पर वे उनके छोटे से बच्चों को उनकी बाहों से छीन लेते थे, उनके छोटे आकर्षक छोटे लड़के बच्चों को, वे पुरानी सी राक्षसी वहाँ अंदर जाती और उनके छोटे से पैरों को लेती और उन्हें दीवार से जोर से पटकती और उन्हें मार देती और उन्हें मगरमच्छों के सामने फेंक देती, बेचारी माँ अपने घुटनों पर बैठ जाती और वो रोती, ओह मेरे बच्चे को मत लो, मेरे बच्चे को मत लो, और ओह उनके पास कैसा समय था। आप जानते हैं कि माँ किस तरह से छोटे बच्चे से प्रेम करती है और कैसे वो उन्हें उनकी ठुड्डी पर थपथपाती है, याद है कि कैसे माँ आपको लेकर और आपको नहलाती और आपको चूमती और कहती कि तुम कितने प्यारे हो, और किस तरह से वह तुम्हें रात में बिस्तर पर सुलाती है, और ओह यदि आप एक छोटा सा द्वार खुला होगा, छोटा सा हवा का झोंका उसमें से होकर आता है कुछ इस तरह से, ओह प्रभु, वह बहुत तेजी से दौड़कर और दरवाजा बंद कर देती है, छोटे बच्चे को ढाक देती और आप जानते हैं वो इसे उठा लेती, उसने आपसे प्रेम किया, देखा उसने आपसे प्रेम किया, ओह वह उस बेचारी छोटी चीज से प्रेम करती थी जो परमेश्वर ने उसे दी थी, जो कि असहाय थी और यह स्वयं की सहायता नहीं कर सकती थी, तो वह उस छोटे बालक से प्रेम करती थी और उसने बस अपने छोटे बच्चों को चूमा और उनके साथ खेलने लगी, क्योंकि वो एक सच्ची माँ थी, देखा। लेकिन ये पुरानी स्त्रियाँ जो बच्चों को मार डालती हैं, वे नहीं जानती कि माँ का प्रेम क्या है, वे माताएं नहीं थी, वे जो कुछ भी सोचती उनके पास बस उनके दिमाग में बहुत ही अच्छा समय था, संसार की चीजें, तो वे अंदर जाकर और उन छोटे बच्चों को मार डालती। आप इस बात को समझने के लिए बहुत छोटे हैं, लेकिन ऐसा अभी भी चल रहा है, ये सही है। अब आप वयस्क लोग जानते हैं कि मैं किस बारे में बात कर रहा हूँ, यह ठीक बात है, यह बहुत अधिक है। ओह आप कहते हैं मैं नहीं लूंगा, लेकिन गर्भपात का मामला वही चीज है, तो ठीक है, लेकिन आप देखते हैं कि वे नहीं जानते कि माँ का प्रेम क्या होता है। अब आप समझते हैं कि मेरा क्या मतलब है जब मैं कहता हूँ सच्ची माताएं, ये सही है, कुछ भिन्न नहीं, वही शैतान। तो वहाँ फिर सालाना उन हजारों गुना हजारों गुना हजारों के बारे में बस सोचें, उतना ही बुरा जितना मिस्र में था, या उससे भी बदतर। और वहाँ तब वे अंदर आती, उनमें माँ का प्रेम नहीं था, इसलिए वे उन छोटे बच्चों को लेकर और उन्हें मार डालती। ओह यह बद से बदतर होता चला जा रहा था। और एक दिन एक और अफवाह आती है, वे एक और बैठक को करने जा रहे हैं। फिरौन ने उसके सारे सलाहकारों को बुला लिया, वे सारे एक साथ आए, वे वहाँ पर पहुँचे, कहा तो ठीक है, वे अब भी बढ़ रहे हैं, अब हम इसके बारे में क्या करें, यह वही पुराना धूर्त चालाक शैतान की शक्ल वाला व्यक्ति उठ खड़ा हुआ। उसने कहा राजा फिरौन लंबे समय तक जीवित रहे, मेरे पास विचार है। देखो आपके पास काम करने वाला व्यक्ति है, आप उन्हें ईंटें डलवाने को लगाते हैं, प्रतिदिन बहुत सारी उन्हें भूसे में से बनवाते हैं, आपने उन छोटे बच्चों और इत्यादि को मार डाला है, लेकिन वे अब भी बढ़ रहे हैं। वो चीज जो आपको करनी चाहिए वो है महिलाओं को भी काम पर लगा दें। यदि आप महिलाओं को काम पर लगाते हैं तो वे नहीं, अब यह एक महिला का स्थान नहीं है, नहीं, इसलिए उन्होंने कहा, लेकिन आप महिलाओं को काम पर रखते हैं और उन्हें वहाँ पर रखते हैं और उन्हें भी ईंट को बनाने दो, और जब वे घर पर आती हैं तो वे बहुत थक जाएंगी, वे अपने पति के लिए भोज को नहीं पका सकती हैं, वे एक अच्छी माँ नहीं बन सकती हैं, देखो, और इसलिए यदि वे काम करने जाती हैं और इसी तरह से जाती हैं तो वे इसे नहीं कर पाएंगी, इसलिए आप उन्हें भी काम में लगा दें। यह अच्छा है, ओह तुम एक बुद्धिमान व्यक्ति हो, इसलिए वो सारी स्त्रियों को काम पर लगा देता है। और यहाँ बेचारा बूढ़ा अमराम आता है, उस रात को आता है, कहा, ओह योकेबेद, मैं नहीं जानता कि हम क्या करेंगे, अब तो वे सारी स्त्रियों को काम पर लगाने जा रहे हैं, मैं तुम्हें बताता हूँ, ओह मैं नहीं जानता कि क्या करना है, हम गुलाम हैं और हम बदतर और बदतर होते जा रहे हैं, मैं इसका पूर्वानुमान लगाता हूँ, यदि परमेश्वर कभी हमारे लिए कुछ भी करता है तो यह हमारे मरने के बाद होगा। अब परमेश्वर इस प्रकार से प्रतीक्षा नहीं करता, क्या वो करता है? नहीं, परमेश्वर कभी कभी हमारी ओर देखता रहता है, क्या वो नहीं देखता? तो ठीक है, तो फिर उस रात उसने कहा, मैं ऊपर जाकर और प्रार्थना करूंगा जैसे मैंने पहले कभी प्रार्थना नहीं की। अब प्रार्थना करने का यही तरीका है, क्या ऐसा नहीं है? प्रार्थना करें जैसे आपने पहले कभी प्रार्थना नहीं की। वास्तव में उस विषय पर आ जाएं। देखो, यदि आप बस ऐसे ही ऊपर जाकर और कहते हैं, प्रभु फलाना और फलाना और फलाना को आशीष देना, परमेश्वर इस पर अधिक रुचि नहीं रखता है। लेकिन जब आप वास्तव में मुख्य विषय पर आते हैं, जब आप छोटे लड़के और लड़कियां प्रार्थना करते हैं तो विषय में आ जाएं। क्या आप विद्यालय में ऐसा करते हैं? क्या आप परमेश्वर से विद्यालय में आपकी सहायता करने के लिए कहते हैं? जब आप स्कूल जाने वाले होते हैं और आप बहुत अच्छे श्रेणी के अंकों को नहीं लाते हैं तो आप अंदर जाकर और कहते हैं, परमेश्वर मैं चाहता हूँ कि आप मेरी सहायता करें। क्या आप प्रार्थना करते हैं? कितने छोटे लड़के और लड़कियाँ प्रार्थना करते हैं, आइए आपके हाथों को देखें। ओह ये अच्छी बात है, अभी अच्छा है। क्या आपके पास एक गुप्त स्थान है जहाँ प्रार्थना करने जाते हैं, जहाँ मम्मी और पापा आपको देख भी नहीं पाते हैं? क्या आप इस प्रकार से प्रार्थना करते हैं? आप इस प्रकार से प्रार्थना नहीं करते? एक छोटा सा स्थान हो, वहाँ पर जाकर और प्रार्थना करें और आपकी छोटी सी प्रार्थना को कहें। आप इसे हर रात सोने से पहले कहते हैं, जब आप प्रातः उठते हैं और इत्यादि। ओह ये अच्छी बात है, कितने अन्य छोटे लड़के और लड़कियां हैं अपने हाथ ऊपर उठाएं जो प्रार्थना करते हैं दूर सारे इमारत में। ओह क्या ये अच्छी बात नहीं है? अच्छा, अब ये अच्छा है, ये दर्शाता है कि आपके पास एक वास्तविक माता और पिता है जो आपको इन चीजों को करना सिखाते हैं। अब जब आप वास्तव में आवश्यकता में होते हैं तो अच्छा होगा कि आप ईमानदारी से प्रार्थना करें। क्या आपने नहीं किया? सो छोटा अमराम वो सीढ़ियों से ऊपर जाता है। ओह प्रभु, उसने कुछ भी रात्रि का भोजन नहीं खाना चाहा। उसने कहा, यह बहुत बुरा है प्रभु। ओह उसने कहा, पिताजी आपको खाना अवश्य ही खाना चाहिए। बस मैं इसे नहीं खा सकता योकेबेद, मैं बस इसे नहीं खा सकता, मैं ओह कहा, लेकिन आपका वजन कम होता जा रहा है और आप परेशान हो गए हैं और आपका चेहरा मुरझा गया है, आप अपने भोजन और चीजों को उल्टी कर रहे हो। ओह मैं नहीं जानता कि क्या करना है। लेकिन उसने कहा, प्रिय यदि कोई भी लोगों का बोझ हृदय से नहीं लेता है, यदि कोई लोगों के लिए प्रार्थना नहीं करता है तो हम क्या करेंगे? हम पत्थर होते जा रहे हैं, निश्चय ही किसी समय परमेश्वर सुनेगा। जी हाँ, यह सही है, यह सही है, परमेश्वर सुनेगा। आप प्रार्थना में लग जाएं और बस वहीं पर बने रहें। ओह इस बार वह ऊपर अलग तरह से जाता है। जब वो इस बार ऊपर जाता है वो घुटने टेकता है, वह अपने हाथों को ऊपर हवा में उठाए रखता है, चिल्लाता है, परमेश्वर मैं अब आपसे बात कर रहा हूँ, आमीन। मुख्य विषय पर जाता है, परमेश्वर आपके पास कान है और आप सुन सकते हैं, आपके पास आंखें हैं और आप देख सकते हैं, आपके पास एक स्मृति है, आप अपने वचन को जानते हैं, आप अपनी प्रतिज्ञा को जानते हैं। मैं आपसे विनती करता हूँ परमेश्वर, यहाँ नीचे की ओर देखें, आप अब्राहम इजाक और याकूब के परमेश्वर हैं, कि आपके लोग संकट में हैं और वे मर रहे हैं, हमारे लिए कुछ करें परमेश्वर, हमें आपकी तुरंत ही आवश्यकता है, हमें बस आपकी आवश्यकता है, या तो हम नाश हो जाएंगे, हमारे पास आपका होना आवश्यक है, हमारे पास बस होना है यदि हमें जीना है। यही है जब आप वास्तव में प्रार्थना करते हैं। ओह उसने प्रार्थना की, आप जानते हैं कभी कभी लोग जब वे प्रार्थना करते हैं वे थक जाते हैं, माता और पिता क्या वे नहीं थकते? ओह बहुत थक जाते हैं। भाई ब्रैनम कभी कभी इतने थक जाते हैं कि मैं लगभग बेहोश सा हो जाता हूँ जब मैं लंबे समय तक प्रार्थना करने जाता हूँ। बस मूर्छित सा हो जाता हूँ, कुछ दिन तक बिना खाए चले जाता हूँ और इत्यादि, और प्रार्थना करता हूँ और प्रार्थना करता हूँ और प्रार्थना करता हूँ और प्रचार करता हूँ, और मैं बस एक ऐसे स्थान पर पहुँच जाता हूँ मैं लगभग बेहोश होने लगता हूँ। और कभी कभी लोग उस तरह से हो जाते हैं। यह हार मानने का समय नहीं है, जारी रखें, परमेश्वर उत्तर देगा। जी हाँ श्रीमान, पकड़े रहें। जी हाँ श्रीमान। सो वो उन छोटी सी पुरानी जर्जर सीढ़ियों से ऊपर जाता है और मैं योकेबेद को आते हुए देख सकता हूँ और कहती है, ओ अमराम, नहीं प्रिय, मैं विश्वास करती हूँ। अब योकेबेद, देखो तुम एक भली प्यारी सी, वह सुंदर प्यारी छोटी सी माँ थी, और उसने उसके गाल पर चूमा, आप जानते हैं, और उसे इस तरह से थपथपाया, कहा, अब माँ तुम वापस जाओ और हारून और छोटी मरियम को बिस्तर पर लिटा दो और मैं ऊपर प्रार्थना करने जा रहा हूँ, और अब यदि तुम मुझे रोते हुए सुनो तो ऊपर मत आ जाना। तो ठीक है, लेकिन अमराम प्रिय, आप क्या करने जा रहे हो? आप तो अत्यंत थक चुके हो। हाँ, लेकिन मेरे हृदय पर लोगों का बोझ है, मुझे इसके बारे में कुछ तो करना है, मुझे अपने घुटनों पर बने रहना है, और जिससे कि सारे लोग, उसने कहा, आज केवल आज वहाँ ईंट की पहाड़ी पर मैं वहाँ नीचे था, यही कहता रहा, खैर निश्चय ही परमेश्वर सुनेगा। और एक बड़ा बूढ़ा व्यक्ति आया, अपने कमर पर हाथ रखा और कहा, वो कब सुनेगा, वो कब सुनेगा? देखा कि कैसे लोग यहाँ तक कड़वे होते जा रहे हैं, वे परमेश्वर के विरोध में हो रहे हैं, क्योंकि वे प्रार्थना करते हैं और प्रार्थना करते हैं और प्रार्थना करते हैं और कुछ भी नहीं होता, और यह एक प्रार्थना करता है और प्रार्थना करता है और प्रार्थना करता है और कुछ भी नहीं होता, और सारे याजक कहते हैं अद्भुत कार्य के दिन बीत गए, और केवल एक चीज जो हम कर सकते हैं, बस सीधे इन पुराने शक्ति से काम करवाने वालों के पास झुक जाएं जो मूर्ति पूजकों की आराधना करते हैं, मतलब मूर्ति पूजक देवताओं की और आदि आदि, और हम क्या कर सकते हैं? लेकिन उसने कहा, लेकिन मैं यहोवा में विश्वास करता हूँ, आमीन, मैं विश्वास करता हूँ कि वो अब भी प्रार्थना का उत्तर देता है। क्या आप यह विश्वास करते हैं? आप इसका विश्वास करते हैं? आमीन। आप सब जो यह विश्वास करते हैं कहें आमीन। अब भी प्रार्थना का उत्तर देता है तो ठीक है। छोटा पुराना कमजोर शरीर, उसका बहुत वजन कम हो गया, जर्जर सीढ़ियों पर वह जाता है, वहाँ पर जाता है और घुटने टेकता है। उसने कहा, हे यहोवा, ओह, उसने प्रार्थना की जैसे उसने पहले कभी प्रार्थना नहीं की थी। उसने कहा, यहोवा, यहाँ पर देखिए, आप एक सच्चे परमेश्वर हैं। हम विश्वास करते हैं कि आपके पास कान है, हम विश्वास करते हैं कि आपके पास आंखें हैं और आप सारी बातों को जानते हैं, और हम विश्वास करते हैं कि आप इब्रानियों के परमेश्वर हैं और हम प्रतिज्ञा के लोग हैं। हम विश्वास करते हैं कि आप अपने वचन को पूरा करते हैं। कहा, इन मूर्ति पूजकों को यहाँ पर देखो, कैसे वे हमारे कम दाम देकर परिश्रम का काम ले रहे हैं और बड़े बड़े विशाल रास्ते और मूर्तियाँ और हर एक चीज बना रहे हैं। आप यहोवा, क्या आप स्वर्ग में बैठकर और मूर्ति पूजकों को आप पर शासन करने देंगे? मैं विश्वास नहीं करता कि आप ऐसा करेंगे, आमीन। मैं अब भी विश्वास नहीं करता कि वो ऐसा करेगा, आमीन। जब शैतान गुस्साता है तब भी परमेश्वर परमेश्वर ही होता है। ठीक है, वो इन शैतानों को ऐसा करने की अनुमति नहीं देगा। मैं आज विश्वास करता हूँ कि जब फैशन और बेहुदा बातें और ये सारी बेकार की बातें चल रही हैं, फिर भी परमेश्वर अब भी राज्य करता है और वो अब भी परमेश्वर है। सही है, हमें जिस बात की आवश्यकता है कि अमराम जैसे कोई तो हो जिनके हृदय पर बोझ है, जो वहाँ पर बने रहे और इसमें से होकर प्रार्थना करे जब तक कि उस ओर स्वर्ग खुल नहीं जाता, परमेश्वर नीचे उतर कर और प्रार्थना का उत्तर नहीं देता है, आमीन। अब यहाँ पर देखो, उसने कहा, परमेश्वर, क्या आप मूर्ति पूजकों को अपने लोगों का इस तरह से मजाक उड़ाने देंगे? सप्ताह और महीने और वर्ष बीत चुके हैं, हम आंसुओं के साथ निरंतर प्रार्थना करते हैं, लेकिन हे परमेश्वर, क्या आप ऐसी चीज की अनुमति देंगे? मैं आज सोचता हूँ कि जब सैकड़ों छोटे छोटे बच्चों को नदियों और तालाबों में फेंक दिया जाता है और जीने की अनुमति नहीं है, और गर्भपात के मामले और हर चीज जो की जाती है, हे यहोवा, क्या आप इस तरह की बातों को आगे बढ़ने की अनुमति देंगे? आज जब विस्की और बियर और रात्रि का जीवन हर चीज चिल्ला रही है और यहाँ तक कि पुलपिट इतना कमजोर हो चुका है कि वे इसके बारे में कुछ भी कहने से डरते हैं, यहोवा, क्या आप ऐसी बेहुदा बातों को जारी रखने की अनुमति देंगे? वो एक दिन उत्तर देगा, ओह, उसका क्रोध भयानक होता है जब ये आता है। जी हाँ श्रीमान, महिलाएं बाहर जा रही हैं और अपने बच्चे की आंख को सिगरेट की ट्रे बना रही हैं ताकि राख को अंदर डालें और सब कुछ, और लोग उनके छोटे बच्चों को बियर के ठिकानों में ले जाते हैं। छोटी लड़कियां और लड़के 6 या 8 वर्ष की उम्र के वहां बैठे होते हैं, शराब पीते हैं और इस तरह की चीजें करते हैं, और राष्ट्र इसे वैध बना रहा है और कहता है इसमें कोई बात नहीं। ओह प्रभु, सोचिए क्या यहोवा इसे नहीं देखता जब वे यहाँ तक उन लोगों का भी मजाक उड़ा रहे हैं जो वास्तव में परमेश्वर के साथ सही हैं। ये सारी बातें जारी है, मजाक उड़ाया जा रहा है। रुके रहो, बस थामे रहो, यहोवा उत्तर देगा, चिंता मत करो। तो ठीक है, हम थोड़ा और आगे बढ़ते हैं, हम उसे वहाँ प्रार्थना करते हुए पाते हैं और वो बस इतना थक जाता है, वो लेट जाता है, वो बस तब तक प्रार्थना करता है जब तक कि वो फर्श पर गिर न गया। वो अब और आगे नहीं जा सका और उसने थोड़ी सी झपकी ली, वो जाग उठा। क्या बात है, वहाँ पर देखो वह उजियाला कहाँ से आ रहा है? ओह देखो, वहाँ कोने में ठहरा हुआ है, वहाँ एक दूत खड़ा हुआ था, उसकी तलवार वहाँ उसके बगल में लटक रही थी। ओह, उसने फिर से देखा और उसने अपनी आंखों को रगड़ा, उसने अपने घुटने को सीधा किया, उसने कहा प्रभु, ओह ओह, आप मुझसे क्या चाहते हैं? उसने कहा अमराम, मैं परमेश्वर का दूत हूँ, मुझे स्वर्ग से भेजा गया है तुम्हें ये बताने के लिए कि परमेश्वर ने तुम्हारी प्रार्थना को सुना है, और मैं तुम्हें यह बताने आया हूँ कि वो एक छुड़ाने वाले को भेजने जा रहा है, उसे अपनी सारी प्रतिज्ञाएं याद है। मैं अब दूत को देखता हूँ, उसकी ओर देखें, वो इस तलवार को निकाल रहा है, वो इसे उत्तर दिशा की ओर संकेत करता है। अमराम ने देखा, उसने कहा बस इस तलवार की नोक प्रतिज्ञा के देश की ओर संकेत करती है, और मैंने अब्राहम, इजाक और याकूब तुम्हारे पिताओं से प्रतिज्ञा की है कि तुम लोग उस देश के अधिकारी होंगे, और मैंने लोगों की कराह को सुना है, मैंने बच्चों की पुकार सुनी है, और मैं नीचे आ गया हूँ, और मैं चाहता हूँ कि तुम जान लो कि तुम इसमें एक महान भूमिका निभाने जा रहे हो अमराम, क्योंकि तुम प्रार्थना में विश्वास योग्य थे, तुम अपने घर में विश्वास योग्य थे, और अगले वर्ष लगभग इसी समय योकेबेद तुम्हारी प्यारी छोटी पत्नी एक छोटे से लड़के बालक को गले लगाने जा रही है, और वो छोटा सा लड़का एक छुड़ाने वाला होगा, महिमा हो। उसने कहा ओह हाँ हाँ, ओह हाँ हाँ, ओह वो बहुत ही सुंदर है। उसने देखा और दूत ऊपर की ओर उठने लगा, ऐसा दिखाई दिया कि सारा आकाश खुल गया है, और वह कमरे से बाहर चला गया। अमराम कुछ देर तक रुका रहा, उसने कहा ओह मैं अपने आप को नहीं संभाल पा रहा हूँ। वो तुरंत ही सीढ़ियों से नीचे गया और कहा योकेबेद योकेबेद जल्दी से आओ। कहा जी हाँ, क्या बात है प्रिय? कहा बैठ जाओ। और चांद खिड़की पर चमक रहा था, वो सुंदर दिख रहा था, और उसने कहा मैंने अभी अभी परमेश्वर के एक दूत को देखा है और उसने मुझे ये सारी बातें बताई हैं। ओह वो कैसा दिखाई देता था? माँ ने कहा वो कैसा दिखता था? कहा ओह वो सुंदर था, उसने उज्जवल वस्त्र पहने हुए थे, उसकी आंखें चमक रही थी, और उसके हाथ में तलवार थी, और उसने उत्तर की ओर संकेत किया, यही वो दिशा है। आप जानते हैं प्रतिज्ञा का देश मिस्र से उस ओर स्थापित है, वहाँ ऊपर की ओर फिलिस्तीन। उसने कहा उसने उत्तर की ओर संकेत किया और उसने कहा कि हमारे पास अगले वर्ष लगभग इसी समय एक बालक होने जा रहा है, और यह छोटा बालक आगे आकर और एक जयवंत बनेगा और अपने लोगों को छुड़ाने जा रहा है। ओह हालेलुया योकेबेद। और उसने ध्यान दिया कि वो श्वेत थी, उसका चेहरा उसकी आंखें घूर रही थी, उसकी बड़ी बड़ी आंखें देख रही थी। योकेबेद क्या बात है? ओह अमराम नहीं नहीं नहीं, हमारे पास एक लड़का है। हाँ ओह आप ऐसा नहीं हो सकता, आप जानते हैं क्या? ओह काश आपके पास ये दर्शन कभी नहीं होता। आप जानते हैं क्या बात है? फिरौन वो सारे छोटे बच्चों को मार रहा है। हाँ लेकिन तुम जानती हो यदि परमेश्वर हमें ये बालक देता है तो परमेश्वर बालक की चिंता करेगा। आमीन, परमेश्वर ने प्रतिज्ञा की, परमेश्वर उसकी चिंता करेगा। तो अगले दिन वो काम पर जाता है और वहाँ पर सारे लोग उन्होंने अमराम पर ध्यान दिया, आने की बजाय आप जानते हैं नीचे झुके होने और थके होने की बजाय उसके कंधे ऊपर उठे हुए थे। कहा कुछ और ईंटों को भेजो, आओ हम चलें। क्या माजरा है? परमेश्वर की महिमा हो। परमेश्वर प्रार्थना का उत्तर देने जा रहा है। ओह नहीं, आप जानते हैं जब आपको उत्तर मिलता है तो यह आपको अच्छा महसूस करवाता है। क्या हम यह नहीं जानते, पापा और मम्मी, जब परमेश्वर उत्तर देता है आपको दर्शन देखने की आवश्यकता नहीं है। बस ये जान ले कि वहाँ पर उत्तर है, बस ऐसा ही है, बस जान ले कि वहाँ पर उत्तर है। अब ध्यान से सुनना, मैं चाहता हूँ कि आप सुने क्या घटित हुआ। अब आप जानते हैं, थोड़ी देर के बाद कहा, तो ठीक है अमराम, तुम्हारे साथ क्या मामला है? परमेश्वर प्रार्थना का उत्तर देने जा रहा है, परमेश्वर प्रार्थना का उत्तर देने जा रहा है। अच्छी बात है, वो प्रार्थना का उत्तर कैसे देने जा रहा है इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। एक बूढ़ा व्यक्ति चलकर आया और कहा, अब तुम्हें क्या लगता है कि वो कब उत्तर देगा? खैर, मैं आपको नहीं बताऊंगा कुछ भी हो, क्योंकि आप एक अविश्वासी हैं। मुझे कुछ और ईंटें दे दो। उन्हें वहाँ इस तरह से फेंक दिया। परवाह न करें, आपको अविश्वासियों को सारी बातें बताने की आवश्यकता नहीं है। क्या आपको है? कोई फर्क नहीं पड़ता। नहीं श्रीमान, निश्चय ही नहीं। मुझे कुछ और ईंटें दे दो। हालेलुया, प्रार्थना का उत्तर देने जा रहा है। आप इसी तरह से महसूस करते हैं जब आप जानते हैं कि ऐसा होने जा रहा है, क्या ऐसा नहीं है? जी हाँ श्रीमान। तो ठीक है, वो इसे कैसे करने जा रहा है? किसी भी तरह से, आप नहीं जानते, इसलिए बस ईंट को भेजते रहो। उन सबको वहाँ पर रख दिया, वहाँ उन सारी पुरानी ईंटों को डाल दिया। उस रात्रि वो घर गया, कहा, ओह योकेबेत, इस पर सोचो, हमारे पास एक बालक होने जा रहा है। ओह, वो छुड़ाने वाला होगा, परमेश्वर उसे भेजने जा रहा है। ओह, यह अद्भुत होने जा रहा है। ओह, लेकिन मैं बहुत ही, ओह चिंता करना छोड़ दो, चिंता करना छोड़ दो। ओह, परमेश्वर अब सुनवाई के अंत में है, परमेश्वर के कान हैं, परमेश्वर सुन सकता है, परमेश्वर के हाथ हैं, वो छुड़ा सकता है। इसलिए ओह, उसके पास बहुत ही विश्वास था। आप जानते हैं, जब आप इसमें से होकर प्रार्थना करते हैं तो आपको उत्तर मिलता है, तब आपको वास्तव में बहुत विश्वास मिलता है। ओह, क्या आपने कभी किसी चीज के लिए प्रार्थना की है और आप जानते हैं कि परमेश्वर आपके लिए इसे करने जा रहा है? क्या आप जो छोटी लड़कियां हैं ऐसा करती हैं, और आप छोटे लड़के? जी हाँ, निश्चय ही, यही है जब वो, यही है जब आप जानते हैं कि ये घटित होने जा रहा है। तो ठीक है, पूरा एक वर्ष बीत जाता है और पहली बात जो आप जानते हैं, यहाँ एक दिन अमराम काम से आता है और क्या हुआ? बहुत ही प्यारा सा छोटा बालक, ओह वह एक छोटा सा प्रिय था, लगभग इतना बड़ा। और तो उसने उस बालक को उठाया, उसे अमराम को सौंप दिया और वो उसे चूमता है। आप जानते हैं, वो उससे प्रेम करता है, देखो। और माँ उसे पकड़े हुए होती है। ओह क्या ही खजाना है, उसने कहा, ओह मैं बहुत डरी हुई हूँ। हालांकि आप जानते हैं, ये छोटा सा बालक, वो क्या ही प्यारी सी छोटी चीज है। और आप जानते हैं क्या, बाइबल ने कहा कि यह अब तक का सबसे सुंदर बालक था। अब मैं जानता हूँ कि माताएं इस पर मुझसे असहमत होंगी। उन्होंने सोचा, आपकी माँ ने सोचा था कि आप सबसे सुंदर छोटे से बच्चे हो, क्या आपने नहीं सोचा? जी हाँ, उसे ऐसा सोचने का अधिकार है। लेकिन बाइबल ने कहा कि यह एक बहुत ही सुंदर छोटा बालक था। ओह, वो एक रत्न था, परमेश्वर के हाथ उस पर थे, आप जानते हैं। तो ओह, वो सबसे प्यारी छोटी सी चीज थी, वो वहाँ पर लेटा रहता और वो बस बिना दांतों की एक छोटी सी मुस्कुराहट को बनाता। आपके पास कोई छोटा भाई और वे नहीं है, वे ऐसा करते हैं, जब उसके पास कोई दांत नहीं होते हैं, बस इस तरह से मुस्कुराते हैं। और पहली बात जो आप जानते हैं, वो, ओह मेरे प्रभु, मैं जानता हूँ, आओ हम इसे छिपा लें। क्या बात है, तुम क्या कर रही हो? उसे सीढ़ियों से नीचे ले जा रही हूँ। आप जानते हैं कि आदेश क्या है? देखो, यदि वो पुरानी लंबी नाक वाली राक्षसी यहाँ पर आ जाती है तो वे हमारे बच्चे को उठा लेंगी और उसे मार डालेंगी। ये सही है, हम इसे रोने नहीं दे सकते, इसलिए ओह, इसे कुछ नाश्ते या रात्रि भोज खिलाने की जरूरत है। इसलिए माँ इसे वहाँ कोने में ले जाती है, वह उसे दूध पिलाती है, आप जानते हैं, और इसलिए वह तब ठीक था। सो उसके कुछ रात बाद वे उसके साथ खेल रहे थे और वह फिर से चला गया। आप जानते हैं, रोना आरंभ किया, उसने तुरंत ही वहाँ जाकर और उसे इस तरह बहुत जल्दी छिपा दिया और सीढ़ियों से नीचे की ओर वहाँ पीछे जाकर एक दीवार के, अमराम ने एक छोटे से स्थान को तैयार किया था जहाँ वो बालक को छिपा सकता था। और फिर पहली बात, आप जानते हैं, उन्होंने कुछ सुना जो सीढ़ियों से वहाँ ऊपर जाते हैं, चला गया, हर कोई एक स्थान पर बिखर गया। कहा, ये वही है, यही वे पुरानी राक्षसी है, पुरानी लंबी उंगलियाँ, रंगे हुए नाखून। और वो पुरानी राक्षसी वहाँ नीचे देखा और खिड़की से बाहर की ओर देखा, कहा, हाँ ये वही है, वे वहाँ पर खड़ी है। द्वार खोलो, बूढ़ा अमराम चलकर बाहर गया, दरवाजा खोला, कहा, तुम क्या चाहती हो? कहा, तुम्हारे पास यहाँ एक बालक है और हम ये जानते हैं और हम इसे उठाने जा रहे हैं। हमारे पास कोई बालक नहीं है कि तुम्हें दें। उन्होंने नहीं माना। हम अंदर आकर और देखेंगे कुछ भी है। हम जांच पड़ताल करने वाली स्त्रियां हैं। हमारी मोहर को देखा और यह एक, क्या यह एक स्त्री के लिए कुछ नहीं है? लेकिन हम जांच पड़ताल करने वाली स्त्रियां हैं। हमें अधिकारी से आदेश मिला है। आप जानते हैं हमारे पास वे अब यहाँ पर हैं। और सो उसके बाद वे नीचे ले जाते हैं, अंदर जाते हैं। वे अंदर जाकर और सोफे को घुमाते हैं और सारे दरवाजों को खोलते हैं और हर एक चीज को फर्श पर फेंकते हैं और सारे पलंग के कपड़ों को लेकर और उन्हें टटोल कर बाहर रखते हैं और ऊपर जाकर और पाते हैं कि पिता का एक छोटा सा गुप्त स्थान है। हर जगह देखते हैं लेकिन वे बालक को नहीं पा सके। इसलिए वे वहाँ चलकर महिला के पास गए। बेचारी योकोबेद वहाँ खड़ी हुई थी। उसका चेहरा सफेद था। वे चलकर ऊपर गए। कहा, यहाँ इस ओर देखो। हम जानते हैं कि तू एक माँ है। हम तुझे देखकर ही ये बता सकते हैं। हम जानते हैं कि तू एक दूध पिलाने वाली महिला है और हम जानते हैं कि वो बालक यहीं पर है। हम वापस आएंगे, हम इसे उठा लेंगे। निकलकर वे दरवाजे से बाहर चली गईं, दरवाजे को जोर से बंद करके, और वे बाहर चली गईं। उसने कहा, ओह ओह, हम क्या कर सकते हैं, हम क्या कर सकते हैं? तो अमराम ने कहा, प्रार्थना करो। क्या यही वो चीज है जो करना है? क्या यही वो चीज है? प्रार्थना करो, आओ प्रार्थना करें। ओह ओह ओह, मैं नहीं जानता कि क्या करना है। ओह, सो उसने कहा, अब देखो तुम शांत हो जाओ और तुम जाकर फिर से बच्चे को दूध पिलाओ। मैं ऊपर जाकर और प्रार्थना करता हूँ। इसलिए वो सीढ़ियों से ऊपर जाता है और प्रार्थना करता है। उसने कहा, यहोवा आपके कान है, यहोवा आपके पास आँखें हैं, यहोवा आप सुन सकते हैं, आप प्रार्थना का उत्तर दे सकते हैं। आपने हमें इस बालक को दिया है, आपने हमें अपनी प्रतिज्ञा दी है और आप अपनी प्रतिज्ञा को पूरा करेंगे और आप उस बालक को संभालेंगे और मुझे पूरा भरोसा है। प्रार्थना करने के बाद बहुत ही थक जाता है। वो तब इस तरह से गिर पड़ा और सो गया। वो बहुत ही थक गया था। दिन भर काम किया और सारी रात प्रार्थना की। वो थका हुआ था और तब आप जानते हैं कि क्या हुआ। वो सोने चला गया और उसने एक स्वप्न देखा। आप जानते हैं परमेश्वर स्वप्न में भी बोलता है, क्या वो नहीं बोलता? निश्चय ही वह बोलता है। हाँ, वह बोलता है, वह बोल सकता है, समझे? और वो स्वप्न में बोलता है। ओह, जब वो उठा उसने कहा, यही है, मुझे इसके विषय में सोचना चाहिए था, यही है जो मुझे करना चाहिए। मैं अब इसके विषय में कुछ नहीं कहूँगा। वो सीढ़ियों से नीचे जाता है। उसने कहा, योकबेद, हाँ प्रिय, ओह मैं बहुत थका हुआ हूँ, मैं सो नहीं सकता। ओह, जाकर सो जाओ, जाकर सो जाओ, ये सब खत्म हो गया है। आप कैसे जानते हैं? ओह, मैं बस जानता हूँ, मुझे बस भरोसा है। पिता उस रात बजाय प्रार्थना करने के लिए ऊपर जाए, वो नीचे तहखाने में चला गया। वो वहाँ पर व्यस्त था। मैं सोचता हूँ कि वो क्या कर रहा था। आइए नीचे उतर कर और उसे देखें। मैं उसे वहाँ जाते हुए देखता हूँ। धम धम धम, इस सरकंडे को लेता है और इसकी ओर देखता है, इसे घुमाकर और देखता कि क्या ये अच्छा है। उस दिन छोटा हारून बाहर चला गया और उन सारी चीजों को हाथों में भरकर एक साथ उठाया, उन्हें तहखाने में रख दिया। आप जानते हैं परमेश्वर तुम्हारी चिंता करता है। पुराने समय का धर्म यह सारा सच्चा होना है, उन्हें चारों ओर से बांध देता है। उसने कहा, अमराम तुम्हारे साथ क्या मामला है? हालेलुया, कुछ नहीं प्रिय, आगे बढ़ो। यह पुराने समय का धर्म है, यह पुराने समय का धर्म है, इसे यहाँ पर लाता है। आप जानते हैं यह पुराने समय का धर्म है। इसे पूरी तरह से बंद कर दें और इतना मेरे लिए काफी अच्छा है, मुझे पुराना दो। वो कुछ तो कर रहा था। आप जानते हैं एक या दो सप्ताह बीत जाने के बाद, पहली बात आप जानते हैं, उन्होंने सोचा कि वो क्या कर रहा था। इसलिए एक रात जब वे सो रहे थे, वो चुपचाप से सीढ़ियों की ओर जाता है और उस छोटी सी चीज को ऊपर लाता है। आप जानते हैं वो इसे इस प्रकार से उठाता है और वो इसे ऊपर लाता है। वो उस ढक्कन को उठाता है जहाँ योकेबेद उसकी पत्नी सो रही थी और वो उसे ढक्कन के नीचे धीरे से रख देता है। और छोटा सा हारून और छोटी मरियम सो रही थी। आप जानते हैं, ओह, वो एक प्यारी सी छोटी चीज थी, वो छोटी लड़की थी और वैसे ही वो छोटा हारून था। सो उसने इसे वहाँ उनके नीचे रख दिया। उसने कहा, प्रिय योकेबेद, उसने कहा, क्या आप इस रात को नीचे तहखाने में प्रार्थना कर रहे हो अमराम? कहा, नहीं, मैं तहखाने में हूँ, परमेश्वर की स्तुति कर रहा हूँ। कहा, तुम क्या कर रही हो? कहा, मैं तुम्हें बताना चाहता हूँ, अब तुम जानती हो कि वे पुरानी राक्षसी वापस आ रही हैं। हाँ, और मैं तुम्हें बताना चाहता हूँ कि हम क्या करने जा रहे हैं। अब हमारे पास 3 महीने का बालक है और हमें इससे छुटकारा पाना है। ओह अमराम, आप क्या करने जा रहे हैं? हमें बालक से छुटकारा पाना है, बच्चे से छुटकारा पाना है। हाँ, ओह आप तो निर्दयी हो। नहीं, मैं निर्दयी नहीं हूँ। नहीं नहीं नहीं, मैं जानता हूँ कि मैं क्या कर रहा हूँ। आपका क्या मतलब है? क्यों आप फिरौन के समान बुरे बन जाओगे? हमारे बच्चे से छुटकारा पाने जा रहे हो? हाँ, बालक से छुटकारा पाने जा रहा हूँ। ओह हम नहीं कर सकते। अब सुनना, यदि हम इसे बचाए रखते हैं तो हम इसे खो देंगे, और यदि हम इसे उसे देते हैं जिसने हमें दिया है तो वो इसे पा लेगा। क्या ये सही है? अब यदि तुम इसे बचाते हो तो हम इसे खो देंगे। अब इसे कैसे खो देंगे? क्योंकि वे पुरानी राक्षसी वहाँ आकर और उसे उठा लेगी। और देखो, यदि आप उस प्राण को बचाते हो और आगे बढ़कर और संसार की तरह जीते हैं तो आप इसे खोने जा रहे हैं। नरक की राक्षसी आपके पीछे है, और यह सही बात है। संसार की यह सारी पुरानी मूर्खता और वहाँ पर की चीजें, यह ठीक आपके पीछे हैं। यदि आप इसे बचाते हैं तो आप इसे खो देंगे, लेकिन यदि आप इसे वापस उसी को देते हैं जिसने इसे आपको दिया है तो आप इसे पाकर और इसे बचाए रखेंगे। अब यह क्या है? यदि हम इसे बचाते हैं तो हम क्या करते हैं? इसे खो देते हैं। अब यदि इसे मसीह को देते हैं तो हम क्या? इसे बचाते हैं। आमीन, यह अच्छा है। अब आपने सही उत्तर दिया। अब उसने कहा, योकेबेद, हम इसे खो देंगे यदि हम इसे बचाते हैं। इसलिए यदि हम इसे वापस उसी एक की ओर मोड़ते हैं जिसने इसे हमें दिया है तो हम इसे बचा लेंगे। अब आपके पास एक प्राण है, और पिता और माँ आपके पास भी उसी तरह से है, लेकिन यदि आप इसे बचाते हैं तो आप इसे खोने जा रहे हैं। यह सही है, नरक की राक्षसी इसे ले लेगी, वे सब इसके पीछे हैं। लेकिन यदि आप इसे वापस उसी एक को देते हैं जिसने आपको इसे दिया है तो आप इसे अनंत जीवन के लिए बचा लेंगे। हालेलुया, आमीन। मुझे क्षमा करें बच्चों, मैं बस चिल्लाने की बात पर पुराने समय का हूँ। यदि आप इसे बचाते हैं, आइए इसे सब एक साथ कहें, यदि आप इसे बचाते हैं तो आप इसे खो देंगे। यदि आप इसे वापस उसी एक को देते हैं जिसने इसे आपको दिया है तो आप इसे बचा लेंगे। आमीन। अब याद रखें, इसे उसे दे दो। अब आइए देखते हैं। ओह वो रोना आरंभ करती है। उसने कहा, ओह आप इसके साथ क्या करने जा रहे हो? उसने कहा, यहाँ देखो, मैं तुम्हें कुछ तो दिखाना चाहता हूँ। तुम्हें वहाँ मेरे बिस्तर के नीचे क्या दिखता है? कहा, मुझे तुम्हें दिखाने दो। और उसने इसे बाहर निकाला। ओह यह एक छोटी सी बेंच से बनी टोकरी है। यह एक छोटा सा जहाज है जो ये है। उसमें कोई पतवार नहीं है, उसमें कोई खेने वाला नहीं है, उस पर कोई तोप नहीं है, और फिर भी यह उस समय का सबसे मूल्यवान माल को ढोने जा रहा है जो उस एक जहाज में लिए हुए था। इसे सुनना, इसमें कोई कप्तान या कोई कर्मी दल नहीं है। भाई, मैं एक व्यस्त जन के लिए भी इस तरह के एक जहाज को जानता हूँ। ओह उसने कहा, मैं मुझे इसे देखने दो अमराम, मुझे देखने दो। वो यहाँ पर आती है। कहा, यहाँ देखो, इस पर एक छोटा सा ढक्कन लगा हुआ है। देखा, वह छोटे ढक्कन को ऊपर उठाता है। उसने कहा, बदबू आ रही है। ओह कहा, हाँ इससे बदबू आ रही है। क्यों? मैंने इस पर डांबर या तारकोल उन्हेल दिया है। इसमें पूरी तरह से डांबर पोता हुआ है। तारकोल डांबर होता है, आप जानते हैं। इसलिए उन्होंने इस पर पूरी तरह से डांबर को लगाया। यही है जिसे वो यहाँ पर उबाल रहा था और इसे इन लकड़ी की बैग के ऊपर उंडेल रहा था। उसने इस पर डांबर पोता था। कहा, देखो, तब पानी उसके अंदर नहीं जा सकता। देखो, ये पूरी तरह से मोहर बंद किया हुआ है। और कहा, और यह बस इसके अंदर नहीं जा सकता, पानी नहीं जा सकता। मैंने इस पर डांबर पोता है। बदबू आ रही है। आप बच्चे जानते हैं कि डांबर क्या होता है। जब वे सड़क को तैयार करते हैं, ओह यह भयंकर गंध है। लेकिन यह बनाए रखता, ये सड़क की सारी दरारों को बंद कर देता है। और इसी तरह से यह काम करता है, इससे सारा पानी बंद हो जाता है। और यही है जो प्रार्थना विश्वासी के लिए करती है। यही है जो प्रतिदिन संसार को आपसे दूर रखता है। जब आप अपने आप को अपने घुटनों पर डांबर पोत देते हैं और कहते हैं प्रभु यीशु, और लहू नीचे आता है और ये आपको पूरी तरह से मुहर बंद कर देता है जिससे कि शैतान आपको पकड़ न सके। देखा, ये सही है। देखा तो फिर ओह बहुत बार लोग यहाँ वहाँ जाते हैं और कहते हैं कि यह भयंकर है, लेकिन इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, ये आपको सुरक्षित रखता है। यही मुख्य बात है, सुरक्षित रहें। कहते हैं आप पुराने समय के हैं, लेकिन इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, ये आपको सुरक्षित रखता है। अच्छा, कहा हम क्या करने जा रहे हैं? तो ठीक है, कहा मैं तुम्हें बताऊंगा कि हम क्या करने जा रहे हैं। हम बालक को लेकर और हम एक थोड़े समय के लिए उससे अलग होने जा रहे हैं, और हम बालक को लेकर और उसे यहाँ इसमें डालेंगे और उसे नील नदी में डाल देंगे। ओह नहीं 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 अमराम, आप हमारे बच्चे को वहाँ नदी में नहीं डाल सकते। हाँ हाँ, मैं जानता हूँ कि मैं क्या कर रहा हूँ। देखो, उसने एक सपना देखा था, वो जानता था कि क्या करना है। देखो, परमेश्वर ने उसे निर्देश दिया था, वो जानता था कि क्या करना है। उसने इसे बनाया और उसने देखा कि यह उसी तरह की नाव थी जिसने नूह को उसके समय में बचाया था। इसलिए उसने कहा, यहाँ पर देखो, मैंने इसके ऊपर काट कर एक छोटा सा छेद किया है ताकि वो सांस ले सके। देखो, उसे वहाँ उसमें से धूप मिल सकती है। और आप जानते हैं पुरानी बाइबल में जहाज वहाँ जो बहुत पहले था, इसे उसी तरह से बनाया गया था और इसके ठीक ऊपर एक छेद था जिससे कि आप अंदर देख सकते थे। आप देखते हैं और जान से उसे ऊपर की ओर देखना होता है। तो फिर यह बेचारा छोटा सा बालक बिना नाम का, उसका कोई नाम भी नहीं रखा गया था, छोटा बिना नाम का बालक, और फिर भी दुनिया का सबसे प्यारा छोटा बालक। अगली रात को जब वे वहाँ पर आए और उन्होंने सुबह के लगभग 3 बजे तक प्रतीक्षा की, और फिर वो वहाँ पर चलकर जाता है और उसका प्रार्थना करके हो गया। वो वहाँ पर जाता है और उसने कहा, अब आओ योकेबेद, उठ जाओ। और सो उन्होंने छोटे हारून और छोटी मरियम को जगाया। ओह, वो वहाँ पर आई और उसने अपने हाथों को रखा। उसने कहा, डैडी। छोटी मरियम, उसने कहा, आप हमारे छोटे भाई इस बच्चे को नहीं उठाएं, क्या आप लेकर और इसे उस नील नदी में डालेंगे जहाँ वे सारे पुराने मगरमच्छ हैं? और उसने मरियम के छोटे बालों को इस तरह पीछे किया और उसकी आंखें सुंदर थी और सुंदर छोटे बाल थे, और सो उसने उसे गाल के किनारे पर चूमा। उसने कहा, प्रिय, इससे मुझे भी पीड़ा होती है, इससे मुझे भी तकलीफ होती है, लेकिन हमें यह करना ही है। आप देखिए, छोटी लड़कियां या लड़के, कभी कभी हमें ऐसे काम करने पड़ते हैं जो हमें तकलीफ पहुंचाते हैं, लेकिन हमें इसे करना ही है। जो भी हो, जब लड़कियां कहती है, हे, क्या तुमने कभी सिगरेट पी है, आप कहेंगे नहीं, तो ठीक है, एक पी कर देखो। ओह, मैं तुम्हारी मित्र हूँ, तुम जानते हो। जी हाँ, तुम कोशिश करके देखो, लेकिन आप इससे हो सकता है थोड़ी तकलीफ पहुँचे, लेकिन कहते हैं मैं इसे पीना नहीं चाहता। देखा, समझे, मैं इसे पीना नहीं चाहता। कहती है, क्या तुम आज शाम को आकर मेरे साथ नाटक देखने जाओगे? नहीं नहीं, मैं नाटक में नहीं जाता। देखा, हो सकता है यह थोड़ी सी तकलीफ देगा। देखा, ओह, तुम बस एक पुराने विचार वाले हो, आप इसका विश्वास न करें, इससे थोड़ी बहुत तकलीफ हो सकती है, बस इससे अपना सिर घुमा लें, ऐसा करना ही सही है। आप देखना, हमेशा ऐसा ही करें, सही काम को करें तो ठीक है। और अब जब लड़कियां इस छोटे से पैर के अंगूठे से इस तरह से नाच की चीजें सीखती हैं और चाहती हैं कि आप इसे करें, आप उन्हें बताएं, नहीं नहीं, आप इसे नहीं करते। देखो, ओह ठीक है, यह बहुत ही मजे वाली चीज है, आप परवाह नहीं करते कि यह कितना मजेदार है, आप वही करना चाहते हैं जो सही है, इसलिए आप हमेशा वही करते हैं जो सही है। अब आप बस इसे अब याद रखें, आप इसे नहीं भूलें, क्या आप करेंगे? अब उन्होंने क्या किया? उन्होंने तब छोटे बालक को लिया और वहाँ पर आ गए, और छोटा हारून आगे आया। उसने कहा, पिताजी, आप हमारे बच्चे के साथ क्या करने जा रहे हैं? उसने कहा, हारून, यहाँ मेरी गोद में बैठ जाओ प्रिय। कहा, देखो हारून, यदि हम बालक को बचाते हैं तो हम क्या करने जा रहे हैं? इसे खो देंगे, लेकिन यदि हम बालक को वापस उसके हाथों में दे देते हैं जो हमें इसे देता है, हम क्या करेंगे? हम इसे बचाएंगे। यह सही है, लेकिन आप इसे कैसे करेंगे डैडी? मैं नहीं जानता, मुझे नहीं पता कि यह कैसे होने जा रहा है, लेकिन परमेश्वर इसे करने जा रहा है। देखा, और सो फिर उन्होंने उस छोटे बालक को वहाँ रखा, और सो वो चला जाता है। और अब वे यहाँ जाते हैं, वे दरवाजे पर जाते हैं, वे नीचे दरवाजे की ओर जाते हैं, वो सड़क पर इस तरफ से नीचे की ओर देखता है, उस ओर नीचे सड़क पर देखता है, वहाँ कहीं भी कोई भी नहीं आ रहा है। कहा, आओ योकेबेद, हारून आओ, मरियम आओ, आओ निकल चले। वे छोटी सी नाव को लेते हैं और वहाँ नदी के झंडे के पास जाते हैं। ओह, दिन के उजाले से बहुत पहले का लंबा समय है और यहाँ छोटा हारून आता है। वहाँ पीछे छोटी मरियम को पकड़े हुए था छोटे भाई और बहन। वे रो रहे थे और बेचारी छोटी योकबेद, वह साथ साथ जा रही है, ऐसे रो रही थी, सुबक 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 सुबक। वे सड़क की ओर देख रहे हैं, सावधान रहो, सावधान रहो। नीचे सड़क पर जाते हुए, सावधान रहो। छोटे बच्चे को उठाकर जा रहे थे और माँ बच्चे को गोद में लिए हुए थी और पिता नाव को उठाए जा रहा था। वे नदी में उतरते हैं। ओह, यह एक बड़ी विशाल नदी है, संसार की लगभग दूसरी सबसे बड़ी नदी, और तो फिर बड़ी विशाल नदी और तेज और बस बड़े विशाल पुराने मगरमच्छों और घड़ियालों से भरी हुई। ओह, वे मोटे थे, उन्होंने उन सभी छोटे बच्चों को उन्हें खिलाया था, वे बिल्कुल मोटे थे। और वह कहती है, योकेवेद ने अपने पति अमराम से कहा, ओह क्या होगा यदि घड़ियाल इसे पकड़ लेगा, क्या होगा यदि यहाँ के मगरमच्छ इसे छू ले। कहा, चिंता मत करो, यदि वे कभी उनकी नाक को उस तारकोल या डामर में लगाते हैं तो वे एकदम से दूर हो जाएंगे। देखो, यही कारण है कि इसमें से बदबू आती है, देखिए वो अपनी नाक को ऊपर उठा लेगा। कहा, वह मनुष्य के शरीर को नहीं सूंघ सकता, इसलिए वो दूर चला जाएगा। उस तारकोल या डांबर से इतनी दुर्गंध आएगी कि वे भाग जाएंगे, यह सही रहेगा, तुम चिंता मत करो। सो वे और वहाँ इस छोटी सी नाव को नीचे रख दिया और उसने कहा, अब तुम बच्चे को दूध पिलाओ। इसलिए माँ बालक को लेती है और उसे दूध पिलाती है और वो बच्चे को तब तक दूध पिलाती है जब तक कि उसका नाश्ता नहीं मिल जाता, सुबह का नाश्ता। और फिर वो इसे चूमती है और कहा, अब हारून तुम इसे चूम सकते हो। और हारून ने इसे चूमा और फिर इसे मरियम के पास ले जाती है और वो इसे चूमती है और माँ इसे चूमती है। और ओह, उसने कहा, मैं बस अब सुनो, हमें योद्धा बनना होगा, समझे, हमें योद्धा बनना होगा। अब तुम सब इसे फिर से चूमना चाहते हो। वे सभी इसे फिर से चूमते हैं। तब उन्होंने उसे वहाँ इसमें रखा और माँ ने छोटा सा कंबल बनाया और उस पर डाल दिया और छोटा तकिया उसने इसे वहाँ पर रखा। उसने कहा, मेरे प्यारे से छोटे बच्चे, परमेश्वर तुम्हें आशीष दे। अब परमेश्वर इसका ध्यान रखेगा, तुम चिंता मत करो। छोटे ढक्कन को नीचे करके बंद किया और पहली बात, आप जानते हैं, पिता ने अपना कोट उतारा, अपनी कमीज को उतारा। यहाँ वो जाता है, पानी में उतर कर जाने लगता है। आप क्या सोचते हैं इस समय के विषय में स्वर्ग में क्या हो रहा होगा? हालेलुया। आप जानते हैं, जब चीजें यहाँ नीचे होती हैं, वहाँ पर भी कुछ तो वहाँ चल रहा होता है। आमीन। मैं परमेश्वर को अपने सिंहासन पर से उठते हुए देख सकता हूँ, चलकर वहाँ आता है, कहता है, जिब्राइल, जिब्राइल तुम कहाँ हो? जिब्राइल कहता है, प्रभु मैं यहाँ हूँ, यहाँ आओ, तुम्हें कुछ तो दिखाना है। कहा, तुम सारे दूत एक मिनट के लिए यहाँ पर आओ, मैं तुम्हें कुछ दिखाना चाहता हूँ। मेरे पास ऐसे लोग हैं जो मुझ पर विश्वास करते हैं। हाँ, मेरे पास ऐसे लोग हैं जो मुझ पर भरोसा करते हैं। एक मिनट यहाँ आओ, यह तुम सारे दूतों के लिए अच्छा है। इस पर एक दृष्टि डालो, देखो यह कहाँ पर है, ठीक वहाँ नीचे उस ओर देखो। हाँ हाँ, जी हाँ, मैं इसे देखता हूँ। ठीक वहाँ पर नीचे की ओर देखो, उन किनारे पर सरकंडों को देखो, वे पत्थर के ढेर और आदि आदि। हाँ, वहाँ देखो, ये क्या है? वहाँ एक मनुष्य है जिसके हाथ ऊपर हवा में उठे हुए हैं, अपने घुटनों पर मुझे पुकार रहा है। वहाँ एक रोती हुई माँ है और दो छोटे रोते हुए बच्चे हैं। वे बिल्कुल अंत तक मुझ पर भरोसा कर रहे हैं। जिब्राइल, तुम्हें याद है जब तुम वहाँ पर गए थे, तुम्हें वो मनुष्य याद है? हाँ, मैं उस रात को कमरे में मिला और उससे बात की। वो अब भी मुझ पर भरोसा करता है। मेरे पास ऐसे लोग हैं जो मुझ पर विश्वास करते हैं। मेरे पास ऐसे लोग हैं जो अंत तक मुझ पर भरोसा करेंगे। उसे देखा, उसकी ओर देखो। ओह हाँ, क्या वो साहसी नहीं है? पिता पानी में चल रहा है, छोटी नाव को वहाँ ढकेलना आरंभ करता है। मैं उसे कहते हुए सुन सकता हूँ, जिब्राइल। हाँ प्रभु। दस हजार दूतों को दृश्य पर बुलाओ, उन्हें तुरंत ही आगे बढ़ने का आदेश दो। स्वर्ग के सेनाओं को बाहर बुलाओ, उन सभी को ऊपर नीचे भेजो स्वर्ग के झुंड के साथ, और उन सभी को इधर और उधर नील नदी पर भेज दो। मैं आज्ञा देता हूँ कि कोई भी मगरमच्छ उस नाव के सामान को नहीं छुएगा, इसे कोई भी नहीं छुएगा, यहाँ तक कि लकड़ी का एक टुकड़ा भी उसके पास न आने पाए। हालेलुया। जिब्राइल ने कहा यह हो जाएगा। ओह, उसने तुरही को फूका, 10,000 दूत टुकड़ी में वहाँ आ गए। पायलट, प्रभु आप कहाँ पर होंगे? मैं दूसरे छोर पर होऊंगा। वह हमेशा ही ग्रहण करने वाले छोर पर होता है। मैं दूसरे छोर पर रुकूंगा। मेरे पास एक उद्देश्य है। जब लोग मुझ पर भरोसा करेंगे, मेरे पास कुछ तो एक उद्देश्य होता है। यह उनके साथ अच्छा करेगा। तो ठीक है, वो दूसरे छोर पर चला जाता है। मैं मूसा को देखता हूँ, मतलब छोटा हारून, और वे लोग वापस सड़क पर जा रहे होते हैं, रो रहे हैं, इसे देखते रहो। और छोटी मरियम, वो अब भी खड़ी हुई है, देख रही है। उसने कहा, ओह ओह, कहा मरियम, चलो, दिन का उजाला हो रहा है, चलो, मुर्गा दिन का बांग दे रहा है, चलो, यह दिन का उजाला हो रहा है, चलो प्रिय, आओ चलें। कहा, ओह डैडी डैडी, कृपा एक बार और, मुझे बस खड़े रहने दो, बस मुझे इसे देखने दो, और मुझे देखने दो कि क्या होता है। मैं थोड़ी देर बाद घर वापस आ जाऊंगी। ओह, यह एक अच्छा विचार है मरियम, यह हो सकता है ठीक हो। तुम बस खड़े होकर और देखो कि क्या बात जगह लेती है। तो ठीक है, मैं इसे देखूंगी। अब तुम थोड़ी देर बाद जल्दी से घर आ जाना। तुम बस देखो कि क्या बात जगह लेती है, और तुम आकर हमारे लिए खबर लाना जो बात हो रही है। ठीक है डैडी। और वे वहाँ से दूर चले गए, उन्हें जल्दी करना था। छोटी मरियम, वो खड़ी होकर और वो देखती है। पहली बात आप जानते हैं, यह उजाला हो जाता है। ओह ओह ओह, यह वहाँ पर क्या आ रहा है? यह एक लकड़ी का लट्ठा है? नहीं, क्या यह एक घड़ियाल है? ओह, वो घूम गया। हा हा, उसने क्या देखा? वो उस बात को देखता है जो बहुत से लोग नहीं देखते हैं, समझे? वह छोटा सा जहाज वहाँ से होकर तैरते हुए जा रहा था। उन्होंने सोचा कि इसका कोई चालक नहीं है, उन्होंने सोचा कि इसका कोई कप्तान नहीं है, इसका था। वे इर्द गिर्द एकत्र हो गए थे। यहाँ एक छोटा मगरमच्छ आता है, कहता है, ओह उस ओर देखो, यहाँ वो आता है, इस तरह से ऊपर तैर रहा है। वो जाता, ओह नहीं नहीं नहीं, वह उस नाव के नजदीक नहीं आ सकता है। वहाँ पर एक आजादी दिलाने वाला रुका हुआ था, छुड़ाने वाला। 30 लाख यहूदी जिन्हें छुड़ाने की आवश्यकता थी, अदलों के सारे शैतान उसे छू नहीं सके। आगे की ओर तैरता हुआ यह छोटा सा पुराना डांबर का बना हुआ जहाज वहाँ उस नदी पर था। पहली बार जो आप जानते हैं, यह एक भंवर के अंदर चली जाती है। ओह, मरियम ने कहा, ओह ओह, इसकी ओर देखो, वो भंवर, इसकी ओर देखो, इसे इस तरह से देखो। पहली बात जो आप जानते हैं, अचानक से यह बस बाहर निकल गई। इसी तरह से यह जाता है। हम कभी कभी एक भंवर में आ जाते हैं। यह छोटी सी नाव, चिंता मत करो, वहाँ कोई तो उसकी ओर देख रहा है। परमेश्वर के दूत उसके चारों ओर डेरा डाले रहते हैं जो उसका भय मानते हैं। उसमें से 10,000 अब आगे कुछ करने वाले क्रम में है। छोटी मरियम, वो नीचे की ओर जाती है, वो इस बड़ी चट्टान पर चढ़ जाती है, और वो इस पर इस तरह से तेजी से भागती है, और वो दौड़कर नीचे उतरती है। वो नाव को देखती रहती है और यहाँ से होते हुए आगे बढ़ती है, और बहुत से पत्थर के इस टुकड़ों में से होकर जाती है। थोड़ी देर बाद नाव वहाँ पर अटक जाती है। कहती है, ओह ओह, मैं अचरज में हूँ। अब उसके पिता ने उसे बताया था, कहा, अब कोई भी तुम्हें नाव को देखते हुए नहीं देखने पाए। यदि कोई वहाँ आता है तो बस ऐसे व्यवहार करना जैसे तुम इसकी ओर देख भी नहीं रही हो, बस किसी और रास्ते पर चले जाना। इस तरह का व्यवहार न करना कि तुम उसकी ओर देख भी रही हो, बस आगे बढ़ते रहना। ठीक है, उसने कहा। वह किनारे पर चली जाती है, नाव अटक जाती है। पहली बात आप जानते हैं, वहाँ मछुआरों का एक बड़ा झुंड होता है, और वो बस ऐसे व्यवहार करती है जैसे वो बस एक छोटी लड़की वहाँ पर चलकर जा रही हो। साथ ही अब दिन के 10 बजे हैं, आप जानते हैं, इसलिए वो बस नदी पर चली गई, और वो अपनी आंखें पीछे की ओर लगाए रखती है, तिरछी नजर से देखती है कि यह कहाँ जा रही है। थोड़ी देर बाद वह दूसरे झुंड के पास से होकर निकलती है, बस देखती रहती है, थोड़ा आगे चली जाती है, आगे बढ़ती रहती है, थोड़ा और आगे बढ़ती जाती है। थोड़ी देर बाद वो एक बड़ी दीवार के पास आ जाती है। ओह प्रभु, यह तो इस दीवार के पीछे जा रही है। वो क्या कर सकती है? उसे नहीं पता कि क्या करना है, इसलिए वो दीवार को पार नहीं कर सकती है, इसलिए वो बस नीचे पानी में उतरती है, और इस तरह से इस पर कदम रखती है, और उसके ऊपर से रेंगती है। वो वहाँ पर जाती है और वो चलना जारी रखती है। पहली बात जो आप जानते हैं, वो एक सुंदर से बगीचे में है, हर जगह फूल खिले हुए हैं, और ये बहुत ही सुंदर है। अब कुछ क्षण के लिए सुनना। अब देखो, छोटी लड़कियां, सुंदर फूल और ओह सारे पेड़ों को काटा छाटा गया है। यह बहुत ही सुंदर दिख रहा था, यह एक उद्यान है। ओह उसने कहा, वहाँ पर देखो उस ओर। ओह प्रभु मैं महल के बगीचे में हूँ, फिरौन के महल में, उद्यान में। मैं यहाँ क्या करूँगी यदि वे मुझे कभी भी यहाँ पकड़ लेते हैं? ओह प्रभु वे मेरे साथ क्या करेंगे? और वो देखती है वहाँ छोटी सी नाव जा रही होती है और वो वहाँ पानी में एक प्रकार से रुक जाती है और यहाँ वहाँ तैरने लगती है वहाँ पानी में। मैं सोचता हूँ क्यों, और वो किसी को बात करते हुए सुनती है। वो वापस झाड़ियों के पीछे छिप जाती है। वो बैठी हुई और इस तरह से बाहर देखती है। आप जानते हैं छोटी मरियम बाहर की ओर देखने लगती है, इसे देखती है। पहली बात जो आप जानते हैं, यहाँ कुछ बड़े विशाल हट्टे कट्टे काले पुरुष आते हैं, इस तरह से एक बड़ी छतरी को लिए हुए होते हैं और दासियाँ साथ साथ चल रही होती हैं और वे गा रही हैं। और यहाँ एक महिला आती है और उसके सिर के चारों ओर एक बड़ी सोने की पट्टी होती है, एक बड़े सांप के साथ जिसका मुंह खुला हुआ है इस तरह से सिर के सामने से। और वो एक अच्छी दिखने वाली महिला है और वो वहाँ नीचे आती है। वो बहुत ही सुंदर वस्त्र और इत्यादि पहने हुई थी। और मैंने एक दासी को कहते सुना, महामहिम क्या आप सोचती हैं कि आज सुबह पानी गर्म होगा? मरियम ने कहा, महामहिम ओह यह अवश्य ही शाही होगी, मतलब मैं अवश्य ही उद्यान में हूँ, और यदि वे मुझे यहाँ पकड़ लेंगे तो वे मेरे साथ क्या करेंगे? तो ठीक है, वो नीचे आती है और ये बड़े काले लोग इस तरह से खम्बे को पकड़कर उठाए रहते हैं, इस तरह से पानी के किनारे पर चली जाती है और वो अपने जूते को उतार देती है। और एक दासी के पास तौलिए थे और दूसरे के पास साबुन था और वह सुबह के स्नान के लिए वहाँ उतर रही थी। सो वो वहाँ नीचे जाती है और वह अपने नहाने के लिए तैयार होने लगती है। वह अपने जूते उतार देती है। उसने कहा, मैं अपने पैर की उंगलियों को पानी में डालूंगी और देखूंगी कि क्या यह अभी भी गर्म है। ओह यह बस अच्छा है, बस वहाँ पर क्या है? ओह मरियम, छोटी मरियम ने कहा, ओह ओह उसने उस नाव का पीछा किया है। ओह उसने कहा, क्या यह मगरमच्छ है? उन बड़े हट्टे कट्टे पुरुषों में से एक ने कहा, बस एक मिनट मैं पता लगाऊंगा। छप 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 पानी में चलकर जाता है, इसे इस तरह से उठाता है और वहाँ चलकर जाता है। कहा, महामहिम इसे दासी को देता है और दासी इसे ले लेती है और इस तरह से उसे देती है और वो इसे नीचे रख देती है। उसने कहा, ये क्या है? बदबू आ रही है, इसके ऊपर तार को लगा हुआ है, यहाँ देखो इसके ऊपर एक छेद है। और मरियम ने कहा, ओह ओह मेरा छोटा भाई जा रहा है, वहाँ मेरा छोटा भाई जा रहा है। और सो वे इसे इस तरह से खोलते हैं। ओह यह एक बच्चा है और यह आरंभ संसार का सबसे सुंदर छोटा सा बालक। और ओह एक परमेश्वर जो घृणा का कारण हो वो प्रेम का कारण हो सकता है, और सारा प्रेम जो वो एक मनुष्य के हृदय में डाल सकता था एक माँ में एक बच्चे के प्रति होता है, उसने उस लड़की के हृदय में डाल दिया। और उसने कहा, यह एक इब्रानी, मैं जानती हूँ यह क्या है, यह मेरा निर्दयी पिता है, वो बहुत ही बुरे हैं। उसने उन सभी को बताया है, उन छोटे इब्रानी बच्चों को मार डाले और उनमें से एक माँ ने अपने बच्चे को बाहर फेंक दिया है यह अपेक्षा करते हुए यह कहीं भी किनारे पर आ सकता है। ओह वो दुष्ट है तो वो इस एक बच्चे को नहीं मारेगा क्योंकि यह एक मेरा बच्चा है। देखा परमेश्वर किस तरह से कर रहा है, उसने उसे उठा लिया और वो उसे चूमती है और बालक रोने लगा। और जब ये रोया तो इसने बस उसके हृदय को गर्म कर दिया। उसने कहा, बेचारी छोटी सी चीज, कहा मैं उसे ले लूंगी और मैं उसे बुलाऊंगी, मैं उसे एक नाम देने जा रही हूँ। और यहीं पर उसको उसका नाम मिला। उसका नाम क्या था? मूसा, और मूसा का अर्थ है पानी में से निकाला गया, समझे? उसने कहा, अब मैं उसे मूसा बुलाऊंगी और वो मेरा खुद का बालक होगा, मैं उसे रखूंगी। लेकिन अब उसने कहा, लेकिन मैं एक दासी हूँ, मैं उसे दूध नहीं पिला सकती, मेरे पास उसे पोषण करने का कोई तरीका नहीं है। उनके पास उस समय ये बोतलें और चीजें नहीं होती थी, स्त्रियां सिगरेट नहीं पीती थी और जैसे वे अब पीती हैं, आप देखिए, और अपने आप को जहर दे देती हैं। तो कहा, ठीक है यदि तुम किसी को जानते हो। कहा, मैं क्या करूं? सो उसने कहा, मैं, उनमें से एक ने कहा, मैं आपको बताऊंगा महामहिम, मैं आपके बच्चे के लिए दूध पिलाने वाली दाई को ढूंढूंगा। ओह उसने कहा, यह बहुत अच्छी बात है। छोटा कुछ तो बोला, एक दूत वहाँ झाड़ी पर खड़ा हुआ था। कहा, मरियम यह तुम्हारी बोलने की बारी है, वहाँ तुम्हारी बारी है। छोटी मरियम भागकर बाहर निकली। कहा, अभी तुम कुछ नहीं कहना, तुम ऐसा न करना, तुम झाड़ियों से बाहर निकलो और कहो कि तुम एक दूध पिलाने वाली को ढूंढोगी और जाकर अपनी माँ को ले आओ। तो ठीक है, सो उसने कहा महामहिम, अब साधारणतः उसने कहा होगा तुम यहाँ क्या कर रही हो, लेकिन देखो परमेश्वर इसे पूरी तरह से ढक रहा था। क्यों? उसके पास 10,000 आगे बढ़ते हुए दूत थे। देखा, उसकी योजना काम करने जा रही है। उसके पास 10,000 दूत वहाँ पर खड़े हुए थे। तो पहली बात जो आप जानते हैं, कहा हाँ छोटी प्रिय, तुम यहाँ क्या कर रही हो? उसने कहा, मैंने अभी आपको बच्चे के साथ देखा है। कहा, मैं जानती हूँ कि एक अच्छी माँ कहाँ पर है जो आपके लिए आपके बच्चे की देखभाल करेगी। उसने कहा, जाकर उसे ले आओ और उसे बताओ कि मैं उसे इस बच्चे की देखभाल करने के लिए एक सप्ताह में $300 दूंगी और मैं उसे वहाँ महल में कमरों का एक पूरा परिजन दूंगी। और यदि तुम जानती हो कि वो एक इब्रानी महिला कहाँ पर है जो एक दूध पिलाने वाली दाय है जो इस बच्चे को दूध पिला सकती है, यह मेरा बच्चा है। कहा, हाँ महामहिम, मैं आपके लिए उस एक को लेकर आऊंगी। कहा, अब एक मिनट रुको, इससे पहले कि तुम महल के अंदर जाओ तुम्हारे पास एक पासवर्ड होना चाहिए। देखो तुम पासवर्ड को नहीं जानती हो, हर दिन हमारे पास एक पासवर्ड होता है। अब आज का पासवर्ड तुम जानती हो कि क्या था? एक कांटेदार फावड़ा और घास का ढेर। कहा, यही है जो तुम्हें फाटक से होकर जाने के लिए कहना होगा। सो छोटी मरियम घर की ओर गर्व से जाने लगती है, जितनी तेजी से वो जा सकती है जाती है और दीवार के ऊपर से कूदती हुई आगे सड़क की ओर और इस तरफ से और उस तरफ से नीचे और जितनी तेजी से वो जा सकती है वह घर में दौड़ती है। और अमराम अभी अभी घर पर आया था और योकेबेद और ओह वे उदास थे, सोच रहे थे कि क्या हो रहा है। उसने कहा, बेचारा मेरा बच्चा, बेचारा मेरा बच्चा। वो उसने कहा, अब जरा सुनना। कहा, मैं अभी थोड़ी देर पहले वहाँ सड़क पर से आया हूँ और उस बेचारी माँ ने हर एक जन को पूरे दिन ऊपर रखा है। वे राक्षसी आज सुबह ठीक इस पड़ोस वाले घर में से होते हुए आई और उन्होंने वहाँ पड़ोस में हर एक बच्चे के सिर को फोड़ दिया। और कहा, वे किस तरह से चिल्ला रहे थे और रो रहे थे, अब मैं नहीं जानता तुम्हारा बच्चा यह कहाँ है। जहाँ भी तुम्हारा बच्चा है परमेश्वर इसकी चिंता करेगा। तभी कुछ तो हुआ, ओह ओह, अब वे वहाँ द्वार पर है। इसलिए उन्होंने जाकर और देखा, नहीं यह नहीं है, यह मरियम है। उसने कहा, ओह ओह मरियम, अंदर आ जाओ प्रिय, बच्चे का क्या हुआ? उसने कहा, माँ मुझे बहुत भूख लगी है। कहा, लेकिन बच्चे का क्या हुआ? कहा, माँ मुझे बहुत ही भूख लगी है। कहा, ओह प्रभु की स्तुति हो, हालेलुया, मुझे बहुत ही भूख लगी है माँ। कहा, लेकिन बच्चे का क्या हुआ? कहा, माँ मैं बहुत ही भूखी हूँ कि मैं घर की हर एक चीज को खा सकती हूँ। कहा, हम तुम्हारे लिए खाने के लिए कुछ तो लाएंगे, लेकिन उस बच्चे का क्या हुआ? कहा, ओह बच्चा बिल्कुल ठीक है माँ, मुझे खाने के लिए कुछ तो दे दो, ओह मैं बहुत ही खुश हूँ, लेकिन इसका क्या हुआ? तो ठीक है, मुझे खाने के लिए कुछ तो दे दो, मुझे बस बहुत भूख लगी है, क्या आप इसकी कल्पना कर सकते हैं? उसने कहा, मरियम यह तेरे माता और पिता है, बच्चा कहाँ है? उसने कहा, माँ मैंने आपको बताया बच्चे को, मैंने इसे देखा और यह बिल्कुल ठीक है, अब माँ मेरे लिए कुछ तो खाने को लाओ, मैं भूख से मर रही हूँ। आप जानते हैं मुझे बस बहुत ही भूख लगी है, जैसे आप लोग भूखे होते हैं जब आप स्कूल से घर आते हैं, आप जानते हैं, ओह बस कुछ तो होना चाहिए। तो वो गई और उसके लिए एक सैंडविच ले आई, कहा अब मुझे बताओ, और वो इस तरह से करती है, स्वादिष्ट 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 खाती है, आप जानते हैं, जैसे कहा, माँ कहा, हाँ लेकिन बच्चे का क्या हुआ? क्यों? कहा, माँ उसने उसे कहानी सुनाई और कहा, माँ तुम जाकर अपने सबसे अच्छे कपड़े ले आओ और अपना सूटकेस को तैयार करो क्योंकि तुम बच्चे की देखभाल करने जा रही हो। ओह ओह ओह, क्या यदि आप इसे खो देते हैं तो आप इसे फिर से पा लेंगे? क्या यह सही है? यदि आप इसे बचाते हैं तो आप इसे खो देंगे? यदि आप इसे दे देते हैं, इसे खोते हैं, आप इसे पा लेंगे? क्या यह सही है? और छोटी मरियम बस खाती जा रही थी। कहा, हाँ। कहा, तुम आज महल जा रही हो और केवल इतना ही नहीं, लेकिन तुम वहाँ जा रही हो, तुम्हें दिए जाएंगे एक सप्ताह में $300 दिए जाएंगे और राष्ट्र में सबसे अच्छे कमरे अपने खुद के बच्चे की देखभाल करने के लिए। सारे संसार के इतिहास में पहली बार जहाँ एक माँ को कभी अपने बच्चे को दूध पिलाने के लिए भुगतान किया गया था। देखा परमेश्वर इसे कैसे करता है, हालेलुया, अपने खुद के बच्चे को दूध पिलाती है और इसके लिए एक सप्ताह में $300 मिलता है और देश में सबसे अच्छे कमरे। परमेश्वर चीजों को करता है, क्या वो नहीं करता? क्या ये प्रार्थना के लिए भुगतान करता है? क्या प्रार्थना करना अच्छा है? तो उसने अपना छोटा सा सूटकेस तैयार किया। अब हम जल्दी करेंगे, हम बस कुछ मिनट में बंद करने जा रहे हैं। तो हम उसने अपना सूटकेस तैयार किया और रास्ते में वो निकल पड़ी, बस उतनी ही तेजी से जितनी तेजी से वो जा सकती थी। और पहली बात जो आप जानते हैं, वो वहाँ आती है, बड़ा बूढ़ा पहरेदार अपने बड़े भाले के साथ वहाँ खड़ा हुआ था। कहा, वहाँ कौन जाता है? उसने कहा, एक कांटेदार फावड़ा और घास का ढेर, आगे बढ़ो। देखा कि परमेश्वर किस तरह से चीजों को करता है। अगले पहरेदार के पास गए, वहाँ उसने अपनी तलवार खींची, कहा, तुम कौन हो? वहाँ कौन जाता है? कहा, एक कांटेदार फावड़ा और घास का ढेर। कहा, आगे बढ़ो। ओह, देखा कि परमेश्वर किस तरह से चीजों को करता है। ऊपर जाओ, जाकर महल में से होकर देखो। आराम करते हैं और सारा राजघराने के लोग बाहर आते हैं, उनकी तलवारों को बाहर खींचते हैं। वहाँ कौन जाता है? कहा, एक कांटेदार फावड़ा और घास का ढेर, अंदर आगे बढ़ो। पहली बात जो आप जानते हैं, एक मनुष्य बाहर आया। कहा, क्या तुम वही छोटी महिला हो जिसके लिए महामहिम प्रतीक्षा कर रही है? जी हाँ। और क्या यही आज सुबह बच्चे के लिए दूध पिलाने वाली दाई मिली थी? जी हाँ। कहा, तो ठीक है, उसे अंदर ले आओ। इसलिए वो बच्चे को वहाँ लाती है, मतलब माँ को भीतर लाती है। और वो छोटी राजकुमारी बाहर चली जाती है और उसने कहा, क्या तुम बच्चों के विषय में कुछ भी जानती हो? उसने कहा, जी हाँ महामहिम। उसने कहा, इस बालक की ओर देखो, क्या वो सुंदर नहीं है? हाँ महामहिम, हाँ है। कहा, क्या तुम जान सकती हो कि एक बच्चे को कैसे दूध पिलाना है? हाँ महामहिम, निश्चय ही। ठीक है, उन्होंने कहा, मैं तुम्हें दूंगा, तुम्हारी मजदूरी $300 प्रति सप्ताह है। क्या परमेश्वर भला नहीं था? और कहा, और तुम्हारे पास महल में सबसे अच्छे कमरे हैं और तुम्हारा भोजन तुम्हारे पास भेजा जाएगा, तुम्हें यहाँ तक बाहर आकर और अपना खाना खुद नहीं बनाना पड़ेगा। कहा, अब यहाँ वो बालक है, सावधान रहना, इसे गिराना मत। ओह, चिंता ना करो, मैं नहीं करूँगी, चिंता ना करें, मैं इसे नहीं गिराऊंगी, तुम इसकी सबसे बेहतर तरीके से देखभाल करना। आप चिंता ना करें, मैं करूँगी, इसकी सबसे अच्छी देखभाल होगी, निश्चय ही यह उसका अपना था। देखो, मैं इसकी सबसे अच्छी देखभाल करूँगी। तुम देख रही हो कि यह एक सुंदर बालक है, बहुत ही सुंदर, उसने कहा। ठीक है, मरियम और उसकी माँ और छोटा मूसा के सामने द्वार बंद कर दिया और जब दरवाजा बंद था, उसने यहाँ वहाँ देखा, उसने कहा, टस टस टस, और उसने सोचा कि तुम उसके बालक हो। हा 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 हा, ओह प्रभु, वो इसे लाड प्यार करने लगी। उसने क्या किया था? वो यदि उसने इसे बचाया होता तो उसने क्या किया होता? क्योंकि उसने इसे वापस उसी एक को दे दिया जिसने उसे दिया था, और उसने क्या, इसे पा लिया और वो इसे बचा सकी। अब क्या होता है यदि हम खो देते हैं? यदि हम अपने प्राण को बचाते हैं तो क्या होता है? हम इसे खो देंगे। और यदि हम इसे वापस उसी एक को देते हैं जिसने हमें इसे दिया है तो क्या होगा? हम इसे बचा लेंगे। क्या यह सही है? आप में से कितने लोग वेदी पर आकर और प्रार्थना करना चाहेंगे? क्या आप इसे करना चाहेंगे? क्या आप चाहेंगे कि यीशु आपकी देखभाल करे जैसे उसने उनकी की, छोटे बच्चे की? कैसे? आओ हम सब छोटे बच्चों अब यहाँ वेदी के चारों ओर इकट्ठा हो जाएं। क्या आप ऐसा करेंगे? ठीक यहाँ सामने आकर वेदी के चारों ओर घुटने टेकें। आइए प्रार्थना करें। आप सभी जन, अब सारे छोटे बच्चे यहाँ पर आ गए। क्या आपको इस विषय में मेरी कहानी पसंद आई? क्या आपको ये पसंद आई? अच्छी बात है, अब आप ठीक आगे वेदी के चारों ओर आ जाएं। अब आ जाएं, आप सब छोटे बच्चे आकर वेदी के चारों ओर घुटने टेकें। ठीक वहाँ वेदी पर बस घुटने टेकें। बस यही है, आप सारे जो पीछे हैं अब यहाँ आ जाएं। हम प्रार्थना करने जा रहे हैं, तो ठीक है, आप आगे आकर और प्रार्थना करना चाहते हैं, आगे आकर और वेदी के चारों ओर घुटने टेकें। यह सही है, अब यह अच्छा है, बस यह ठीक है। अब माताएं, आप भी आना चाहती हैं, और पिता, आप सब गलियारे में घुटने टेकना चाहते हैं। अब मैं आप छोटे बच्चों से यहाँ कुछ तो पूछना चाहता हूँ। देखो, क्या आप विश्वास करते हैं कि यीशु आपसे प्रेम करता है जैसे उसने मूसा से किया था? क्या आप विश्वास करते हैं कि वे दूत आपको इस तरह से देखते हैं? अब परमेश्वर ने आपको एक प्राण दिया है, क्या उसने नहीं दिया? अब यदि आप अपने प्राण को बचाते हैं तो उसका क्या होगा? इसे खोने जा रहे हैं, लेकिन यदि आप इसे आज सुबह वापस यीशु को देते हैं तो आप क्या करने जा रहे हैं? इसे बचाने जा रहे हैं। आप बचाना चाहते हैं? अब आप अपने प्राण को बचाना चाहते हैं? क्या आप नहीं चाहते? और आप बड़े होकर सच्ची माँ बनना चाहती हैं? और सच्ची महिलाएं, क्या आप नहीं चाहती? और सच्चे पुरुष, प्रचारक और इत्यादि, क्या आप ऐसा नहीं करना चाहते हैं? अब यदि आप चाहते हैं तो आप अपना प्राण यीशु को दें। यही वो तरीका है जिसे आप करते हैं। आप कहते हैं, प्रिय यीशु, यही सब है जो मुझे आपको देना है, यह मेरा प्राण है। लेकिन आप मुझ पर नजर रखेंगे जैसे आपने मूसा पर नजर रखी थी। अब यदि आप में से कुछ वरिष्ठ लोग भी आकर और घुटने टेकना चाहते हैं, आप में से कुछ माताएं, हो सकता है कि आप आज सुबह यहाँ घुटने टेकना चाहेंगे, तो यह आपके लिए भी खुला है। यदि आप चाहें तो आ जाएं, तो ठीक यहाँ पर आकर घुटने टेके, यह ठीक है। यहाँ एक माँ अपने छोटे लड़के के साथ आ रही है, क्या कोई और होगा? एक पिता, डैडी, आप में से कोई भी, यदि आप अमराम की तरह प्रार्थना करने वाले व्यक्ति बनना चाहते हैं, तो आप भी आकर घुटने टेकें। माँ, यदि आप योकेबेद की तरह बनना चाहती हैं, तो आप ठीक साथ ही आकर वे भी घुटने टेकें। निश्चय ही यह सबके लिए है, क्योंकि क्या आपके पास भी एक प्राण है? यदि आप इसे बचाते हैं तो क्या होगा? इसे खो देंगे। और यदि आप इसे वापस उसी एक को देते हैं जिसने इसे आपको दिया है, तो क्या होगा? आप इसे बचा लेंगे सनातन जीवन के लिए। यह सही है। अब क्या आप यहाँ पर आगे एकत्र नहीं होना चाहेंगे, आप सारे जो अब इच्छा रखते हैं? और आइए हम इन छोटे बच्चों के साथ और हमारे साथ अब सभी के साथ प्रार्थना करें। मातृ दिवस एक अद्भुत दिवस और हो सकता है आज रात मैं अपने विषय को बदल सकता हूँ और आज रात को आगे जारी रखूंगा और बताऊंगा कि उस माँ ने क्या किया, उस माँ ने कैसे किया। यही वो एक थी जिसने अपने छोटे से लड़के को शिक्षित किया कि सारे इसराइल की अगुवाई प्रतिज्ञा किए हुए देश की ओर करे। ओह, वो एक सच्ची माँ थी। क्या वो एक सच्ची माँ नहीं थी? अब आपके पास भी एक सच्ची माँ है और माँ आपके लिए प्रार्थना कर रही है। वो एक सच्चा पिता था और पिता आपके लिए प्रार्थना कर रहे हैं। और अब हम सब एक साथ मिलकर प्रार्थना करने जा रहे हैं और यीशु से हमारी सहायता के लिए मांगेंगे। भाई नेवल, क्या आप आकर हमारे साथ घुटने टेकेंगे? और हम सब अपने सिरों को झुकाएं हर कहीं पर। अब बहन गर्टी, प्रिय स्वर्गीय पिता, आज यह छोटी सी साधारण सी कहानी बहुत पहले बीते हुए दिनों के बारे में थी, जहां एक सच्चा पिता और माता, एक सच्चा विश्वासी आपके पास आए और उन्होंने आपकी आराधना की, उन्होंने आप पर विश्वास किया। वहां उस समय पर देश में संकट था और हम किस तरह से जानते हैं कि आज सुबह न ही यहाँ एक आधुनिक छोटा मूसा घुटने टेके हुए है, हम कैसे जानते हैं कि आज सुबह न ही एक आधुनिक छोटी मरियम भी यहाँ घुटने टेके हुए है? भविष्यवक्तनी, हे प्रिय पिता, ये छोटे बच्चे आपसे प्रेम करते हैं और वे आए हैं क्रूस पर घुटने टेके हुए, यह समझते हुए कि उनके पास एक प्राण है जिसे अवश्य ही बचाया जाना है, और वे इसे अब आपको दे रहे हैं। क्योंकि हमने अभी आपके वचन में पढ़ा है, यदि तुम इसे खोते हो तो तुम इसे पा लोगे, और यदि तुम इसे बचाते हो तो तुम इसे खो दोगे। और पिता, वे अपने प्राण को अपने पास नहीं रखना चाहते, वे अपने आप के लिए नहीं जीना चाहते, वे अपना प्राण आपको देना चाहते हैं, जिससे कि इसे देने के द्वारा वे अनंत जीवन को पा सके। प्रदान करें, इसे प्रदान करें प्रभु, इन सारे छोटे लड़के और लड़कियों को जो वेदी के चारों ओर हैं, आशीषित करें। माता और पिताओं को आशीषित करें जो आज सुबह यहाँ पर हैं। ओह, होने पाए, आपका प्रेममय अनुग्रह और दया उन सभी पर हो। प्रभु, हमारे सारे पापों और कमी घटियों को क्षमा करें, हमारे बीच से बीमारी को निकाल दीजिए, दूतों को भेजिए। हालेलुया, परमेश्वर, आप जिसने जिब्राइल को आज्ञा दी और 10,000 दूत उस कुछ पर निकल गए, और कितने ही और दूत वहाँ पर आ गए हैं जब उन्होंने इन बेचारे छोटे बच्चों को आज सुबह इस वेदी पर घुटने टेकते हुए देखा है। हर कहीं पर इस वेदी के ऊपर और इस कलीसिया में से होते हुए परमेश्वर के दूत खड़े हुए हैं। लेखा जोखा रखने वाला दूत यहाँ पर है, उनके नाम को एक किताब में लिख रहा है। वे अपने प्राण को खो रहे हैं जिससे कि वे इसे मसीह में पा सकें। इसे प्रदान करें प्रभु, होने पाए, इस दिन से लेकर अब से आगे उनका छोटा सा जीवन मधुर और नम्र हो। होने पाए, वे अपने माता पिता और अपने स्वर्गीय पिता के आज्ञाकारी बालक बने जब तक आप उन्हें घर नहीं बुला लेते। उनकी छोटी सी नाव में उनका मार्गदर्शन करें। हर एक भंवर में से होते हुए जब हर बार यह झाड़ियों में फंस जाती है तो होने पाए परमेश्वर के दूत इसे परमेश्वर के प्रेम की बहती धाराओं के अंदर ढकेल दें। इसे प्रदान करें प्रभु और मार्ग के अंत में होने पाए वे एक प्यारे से घर को पाएं और उनकी माँ और उनके प्रियजन वहाँ महिमा में हैं, जहाँ परमेश्वर उस दिन स्वागत करने के लिए फाटक पर खड़ा होता है। इसे प्रदान करें पिता। हमारे सारे पापों और अपराधों को क्षमा करें और इस दिन से हमारी सहायता करें कि हम पूरी तरह से आपके बने रहें। हम इन छोटे बालकों को अब आपके हाथों में सौंपते हैं और ये माताएं जो उनके साथ हैं प्रभु कि वे इस मातृ दिवस पर सही तरह की माताएं बने। यह यादगार समय जो माताओं को दिया गया है और होने पाए वे इस दिन से लेकर बेहतर माँ बने, होने पाए बच्चे बेहतर बच्चे बने, होने पाए हम सब बेहतर हों प्रभु और आपकी अधिक से अधिक सेवा करें। इसे प्रदान करें पिता क्योंकि हम इसे यीशु के नाम में मांगते हैं, आमीन। अब आइए एक छोटे से समूह गीत को गाएं। क्या आप विश्वास करते हैं कि यीशु ने आपको बचाया? क्या आप चाहते हैं कि यीशु अब आप पर नजर रखे? जब आप खड़े होते हैं उसकी ओर अपना हाथ ऊपर उठाएं। अब इस तरह से मैं चाहता हूं कि आप अपने पिता और माता और उन सभी की ओर फिरें, इस ओर घूमें। अब यहां उनकी ओर देखें, माता और पिता को। आप सब छोटी लड़कियां और लड़के खड़े हो जाएं। अब कितने लोग यीशु को अपने उद्धारकर्ता के रूप में स्वीकार करते हैं और आप अब से लेकर यीशु पर भरोसा करने जा रहे हैं ताकि आपकी देखभाल करे जैसे उसने छोटे मूसा के साथ किया। आइए आपके हाथों को उठते हुए देखें, आप में से हर एक जन ये अच्छा है। अब क्या हुआ यदि आप अपने प्राण को बचाते हैं तो आप क्या इसे खो देंगे? लेकिन यदि आप इसे यीशु को देते हैं तो क्या होगा? आप इसे बचा लेंगे। अब क्या हो यदि आज सुबह यीशु आपको पा लेता है और अब आप यीशु के हैं? क्या आप नहीं हैं? आप यीशु के छोटे लड़के और लड़की हैं। इन छोटे से बच्चों को देखो जो यहाँ आंसू के साथ खड़े हैं। मुझे बताओ क्या परमेश्वर इस बात को नहीं जानता? आमीन। आने वाले कल के पुरुष और महिलाएं खड़े हो जाएं। ओह, मैं यीशु से कितना प्रेम करता हूँ। अब आइए आप सभी अब हमारे हाथ को ऊपर उठाएं। क्या ये सुंदर नहीं है? अब यीशु संसार के छोटे बच्चों से प्रेम करता है। बहन हमें स्वर को देना। अब आप सब ठीक इस ओर घूमें मेरी ओर। आप छोटी लड़कियां, मैं गाना चाहता हूँ यीशु संसार के छोटे बच्चों से प्रेम करता है। कितने इस गीत को जानते हैं? तो ठीक है, आइए अब हम गाएं। अब आप सब अब सेना में हैं। क्या आप ये जानते थे? आप जानते हैं कि आप परमेश्वर की सेना में हैं। अब आप ठीक अब मेरी ओर देखें और अब मेरे साथ इसे गाएं क्योंकि अब आप योद्धा हो। क्या आप ये जानते हैं? क्रूस के योद्धा। अब मैं हो सकता है कभी भी कुछ नहीं कर सकता। आप उस गीत को जानते हैं? तो ठीक है। बहुत समय पहले पुराने संडे स्कूल के गीत को मैंने सीखा था। अब आप मेरे साथ गाएं। I'm in the Lord's army. अब मेरे साथ गाएं, अब सब एक साथ मिलकर, अब आप विश्वास करते हैं कि आप इसे अपने आप से गा सकते हैं? यहाँ ऊपर आओ लेसी, ठीक यहाँ ऊपर आ जाओ। अब मैं चाहता हूँ कि आप सब उन्हीं इशारों से अभिनय को करें जो मैं करता हूँ। अब यहाँ वेदी के पीछे आ जाएं, ठीक यहाँ ऊपर आ जाएं। आप में से हर एक जन ठीक यहाँ ऊपर चलकर आए जहाँ मैं हूँ। देखो यहाँ ऊपर चलकर आओ, कोई भी वेदी से बाहर नहीं रहता है। ठीक यहाँ मेरे साथ आ जाओ बस। तो ठीक है, ठीक इस प्रकार से। अब इस तरह से घूमें इस श्रोतागण की ओर, इस तरह से बस। मैं आपको दिखाना चाहता हूँ कि छोटे लड़के और लड़कियाँ यीशु को जानने के बाद क्या करते हैं। अब लड़के और लड़कियाँ ठीक यहाँ वापस आ जाएं। अब आप बस अब वहाँ देखिए। अब जब मैं कहता हूँ मैं हो सकता है कभी भी सेना में हूँ, आप पैदल सेना में कदम ताल करते हुए आप भी कदम ताल करें। जब मैं कहता हूँ मैं हो सकता है कभी भी घुड़सवार सेना में सवारी नहीं किया हो, आप वही करें जो मैं करता हूँ। अब मुझसे दूर हो जाएं, अब बिल्कुल पीछे जगह को बनाते हुए, बहुत पीछे, बहुत पीछे। अब आप तैयार हैं, अब चलिए आओ हम इसे गाएं। आमीन। बस शांत खड़े रहें। कितने लोग ऐसे हैं कहें आमीन। अब स्वर्गीय पिता आप इन छोटे बच्चों को आशीष देना, वे आपके हैं प्रभु। उन्होंने अपना जीवन आपको दिया है, उन्होंने मूसा की छोटी सी कहानी को सुना और आपने कैसे उसकी रक्षा की। उन्होंने एक अच्छी माँ और एक अच्छे पिता के बारे में सुना जिन्होंने उनकी सहायता की और उनका पालन पोषण किया, और वैसे ही ये छोटे बच्चे अच्छे माता और पिता होंगे। और मैं प्रार्थना करता हूँ पिता कि आप उन पर नजर रखेंगे और उन्हें समय की धारा में ले जाएंगे, और होने पाए परमेश्वर के दूत उनकी रक्षा करें और फिर ग्रहण करने के अंत में हो उन्हें अंत के दिनों में स्वीकार करें। प्रभु आपके राज्य में हम मसीह के नाम में मांगते हैं, आमीन। अब आप अपनी सीटों पर वापस जा सकते हैं और अपने माता और पिता को बता सकते हैं कि आप कितना अच्छा महसूस कर रहे हैं, आमीन। उनके भटकने के सारे दिनों में उनकी अगुवाई की गई थी। आप इस गीत को भी जानते हैं? हर कोई गाए। कितने लोग आज सुबह बीमार हैं और प्रार्थना को चाहते हैं? आइए आपके हाथ को देखें। ऐसा होने के कारण हमें थोड़ी देर हो गई है। हो सकता है हम अपनी चंगाई की सभा को आज रात के लिए रखें और बस अब प्रार्थना के एक शब्द को सामने रखेंगे क्योंकि हमें थोड़ी देर हो गई है। क्या आपने छोटी सी कहानी का आनंद लिया है? आप सोचते हैं कि यह छोटे से बच्चों के लिए अच्छी थी? जी हाँ, हम उन्हें बहुत सी बार छोड़ देते हैं, हमें ऐसा नहीं करना चाहिए। देखिए मुझे संडे स्कूल में सिखाने का कभी मौका नहीं मिला और आज सुबह उनसे बात करने का समय था। मैं आपको थकाना नहीं चाहता था, लेकिन मैं आपको यह छोटी सी कहानी बताना चाहता था। याद रखें छोटे बच्चों, यह कोई ऐसी पुरानी कहानी नहीं है जो आपने कहीं भी पढ़ी हो। यह सच्चाई है, यही सच्चाई है। परमेश्वर ने ऐसा किया और वह अब आपके साथ है, तो ठीक है। आइए अब हम अपने सिरों को झुकाएं जब हम अपने समाप्ति के गीत को गाते हैं। धीरे धीरे यीशु का नाम अपने साथ लें, हर एक शत्रु से एक ढाल की नाई, तो ठीक है।